ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव परम भाग्य का दिन, परम भाग्य का अवसर, और उसमें हमारा जो भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसका कारण यह है, 1965 के अगस्त महीने में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से बोट से निकले, जलदूत नाम के बोट पर बैठ के निकले, और उसमें 40 दिन की यात्रा थी और बीच में जन्माष्टमी आई। वो जन्माष्टमी हमारे प्रिय प्रभुपाद जी ने अकेले मनाई, कुछ बोट के दो चार लोग थे उनको लेके आए, बिठाया, कुछ कथा सुनाई, थोड़ा बहुत प्रसाद दिया। और लिखते हैं वो कि मेरे सारे गुरु भाई अपने अपने मंदिरों में बड़े पैमाने पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाते होंगे, और मैं यहाँ पर अकेला जलदूत बोट पर अमेरिका की वो यात्रा कर रहा हूँ। वहाँ के पतित जीवों को भगवान की सेवा में लगाने के प्रयास में मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। आप उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव मैंने भी किया। जब मैं 2 साल में सऊदी अरब में काम करने के लिए गया था तो मेरे होटल के कमरे में मैंने अकेले जन्माष्टमी मनाया था। कुछ साधन नहीं था उधर, तो एक मिक्सी खरीदी थी मैंने और भगवान के लिए मैंने 14 प्रकार के जूस बनाए थे। तो बहुत लोगों को बुलाया था जन्माष्टमी करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के भय की वजह से सब लोगों ने हाँ हाँ करके एंड में कोई भी नहीं आया। मैं सज धज के अच्छी तरह से जूस बना के भगवान का फोटो पे ऑल्टर लगा के थोड़े बहुत फूल लगा के ऑफरिंग किया, फिर अकेले बैठ के मैंने एक पियानो खरीदा था उधर ही जाते ही, उस पर बहुत सारे भजन गाए, रात तक देर तक गाता रहा। तो कुछ कुछ मुझे अनुभव है कि प्रभुपाद जी को अकेले बोट पर कैसा लगा होगा। जनरली कैसा होता है, अगर मैं कथा कर रहा हूँ तो मेरे सामने हजारों की संख्या होनी चाहिए, एक आध दो श्रोता होंगे तो ऐसा क्या है, कहीं और चला जाऊंगा जहां पर और लोग सुनेंगे। इतने बड़े आचार्य, हाँ, इतना बड़ा त्याग करके जा रहे हैं। आज उन्होंने इस प्रकार का अनुभव लिया, बोट में है, फिर जाके 1 साल वहां कष्ट उठाया। इसलिए हम लोग इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर इतनी भव्य रूप से जन्माष्टमी मना रहे हैं, है कि नहीं? मैं कल आकर जब देखा, इतना सुंदर डेकोरेशन है, सब जगह पर फूल लगे हुए हैं, शैंडेलियर लगा हुआ है, भव्य अभिषेक होगा, हजारों लोग आएंगे शाम को। और एक जगह पे नहीं, 652 विश्व भर में जितने मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए हैं आज तक, जाने के समय तो 108 बनाए थे, लेकिन आज वो 652 हो गए हैं। और कितनी सारी ऐसी कम्युनिटीज है हमारी जैसी, गोवर्धन इको विलेज जैसी, सब जगह पर आज भव्य उत्सव, शायद करोड़ों से करोड़ों लोग इसमें सहभाग लेंगे, इतने सारे भोग लगाएंगे, कितने सारे ड्रामा होंगे, कितना सारा करोड़ों लोगों को प्रसाद बटेगा, सब जगह पर लोग आनंद का अनुभव करेंगे। हाँ, ये इनके त्याग के वजह से आज हम लोग जो आनंद मना रहे हैं ना, वो सब इनकी वजह से। इन्होंने जो तपस्या किया, जो इन्होंने कष्ट उठाया, जो करुणा दिखाई, और इतनी मेहनत की, इसलिए हम लोग सब बैठकर उनके जो तपस्या का फल है ना, वो सब हम भोग रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हृदय से हाथ जोड़कर श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने अगर इतना सब त्याग नहीं किया होता, तो हम सब लोग इतने बड़े आनंद के भागीदार नहीं होते। और यहां तक, और एक बात भी सच है कि उनके शिष्य भी जो हैं, उन्होंने भी पहले पहले दिनों में कुछ स्पिरिचुअल लाइफ का भी आनंद नहीं उठाया। जैसे हमारे गिरिराज महाराज हैं, वो आज भी वृंदावन के कई जगह पर नहीं गए। वो मैंने कहा, अरे आपको, आप तो इतने सीनियर डिवोटी हैं, तो जब भी हम वृंदावन में आते थे तो सेवा में रहते थे, केवल हमारा कार्यक्षेत्र केवल रमन रीति इस्कॉन मंदिर हुआ करता था। इतनी सेवाएं होती थी कि हम लोग कभी जा ही नहीं पाए। इस्कॉन मंदिर के पास एक स्थान है मदन टेर, बोले उधर भी हमको मालूम नहीं किधर है वो स्थान। और जब हमारे हॉस्पिस में आए थे तैयारी करने के लिए, तो करीब 15 दिन रह रहे थे इस्कॉन मंदिर, अपना घर जो इस्कॉन मंदिर के पास में है, और हॉस्पिस, ये सब 5 मिनट के अंतर पे है। इसके अलावा वो कहीं पर नहीं, कहीं भी नहीं गए। हम लोग कैसे कहते हैं, अरे थोड़ा राधा रमन जाके आते हैं, अरे थोड़ा जमुना जी केसी घाट जाके आते हैं, थोड़ा वो दर्शन करके आते हैं। इन लोगों ने इतना केंद्रित होकर अपना सेवा दिया था, इसलिए वो कृष्ण बलराम मंदिर आज वहां पर प्रकट है, इसलिए जुहू मंदिर वहां पर प्रकट है, इसलिए मायापुर का मंदिर प्रकट है, और इसलिए हम लोग सब लोग हजारों की संख्या में आज जाकर आनंद लेते हैं, दर्शन ही दर्शन करते रहते हैं, 15 15 दिन घूमते रहते हैं, प्रसाद पाते हैं। कोई सेवा का जिम्मेदारी नहीं हमारे पर, केवल दर्शन ही करना है, केवल कथा ही सुनना है। इट्स लग्जरी, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, ऐशो आराम है वो स्पिरिचुअल। लेकिन किसी ने उसके लिए तपस्या त्याग कष्ट लिया था, इसलिए हम लोग आज बैठकर घंटों 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 भगवान की कथाओं का आस्वादन कर सकते हैं। प्रभुपाद के समय पर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि सेवाएं इतनी थी, इतनी जिम्मेदारियां थी, इमरजेंसी के पैमाने पर हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित करना, प्रतिष्ठापित करना बहुत जरूरी था। तो बार बार और लाख बार, अनंत बार प्रभुपाद जी को, उनके शिष्यों को धन्यवाद है, जिसके वजह से हमारी ये आध्यात्मिक जीवन समृद्ध है आज, समृद्ध, समृद्धि के साथ में भरा हुआ है, आनंद के साथ भरा हुआ है। और जो कृष्ण भावना के मार्ग में जो अनंत प्रकार के आनंद के प्रकार हैं, वो सब प्रकार के आनंद हम प्रचुर मात्रा में अनुभव लेते हैं। हरे कृष्णा। तो आज की श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी की कथा के पहले हम कंस का गौरव कथा करेंगे। आप कहेंगे, अरे प्रभु जी कृष्ण के बारे में बताइए ना, कंस के बारे में क्यों बता रहे हैं? लेकिन कंस कितना महान वीर था, वो समझे बिना कृष्ण कितने महान है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे उसको, लेकिन संक्षेप में बताएंगे आपको। ये समुद्र मंथन के समय कालनेमि का विष्णु से युद्ध हुआ, और विष्णु ने उसको वध कर दिया। संजीवनी देकर शुक्राचार्य ने फिर जीवित किया उसको। देखिए कैसे काम होता है, राक्षस मरते रहते हैं और बार बार शुक्राचार्य उसको जीवित कर रहे हैं। फिर उसने ना तपस्या किया मंदराचल में जाकर, केवल दुर्वा खाया उसने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगा कि मुझे किसी भी शक्तिशाली देवता से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और सब लोग ही ऐसे हैं, ऐसा मत समझना कि केवल हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था, इसने भी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से पहले अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि नॉट पॉसिबल। फिर उसने कहा कि मुझे किसी भी शक्तिशाली देवता से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ, यथावकाश उग्रसेन महाराज का विवाह पद्मावती से हुआ। ये पद्मावती देवी थी ना, थोड़ी सी वैष्णव अपराधी थी। हमारे अंदर भी ऐसे कोई लोग होते हैं, बार बार ऐसे डिवोटिस को क्रिटिसाइज करते रहते हैं बिना मतलब के, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन कोई दिखा पॉइंट तो उस पर बहुत रगड़ेंगे, बार बार बोलेंगे देखो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसको इतनी अक्कल नहीं, क्या उसको समझता नहीं, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी बात पर बोलते रहेंगे और सराहना नहीं करेंगे किसी की। तो गुरुसेन महाराज जैसे भक्त की पत्नी होने पर भी पद्मावती ना बार बार वैष्णवों को क्या कहती थी, टीका करती रहती थी उनके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, क्रिटिसाइज को, हाँ निंदा करती रहती थी उनकी। तो एक दिन वो अपने पिताजी के घर में रहने गई, मायके गई थी अपने सत्यकेतु पिताजी के घर पे। तो उधर प्रमील नाम का राक्षस उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, तो उसने अपने सिद्धि का प्रयोग करके उग्रसेन महाराज का रूप धारण किया और ऐसे दिखाया कि उग्रसेन महाराज अपने ससुराल आ रहे हैं, और आए और इसके साथ में शरीर संग किया और उसके द्वारा ये कंस का जन्म हुआ। एक और हेति नाम का राक्षस था, उसका तेज भी इसके अंदर सम्मिलित हुआ। तो प्रमिलासुर और हेति दोनों राक्षसी का बीज प्रमिला पद्मावती के गर्भ में स्थापित हो गया और वही कंस के रूप में प्रकट हो गया। कहने का मतलब क्या है, जन्म के समय जो चेतना होती है माता और पिता की, वही चेतना वाला बालक जन्म लेता है। इसलिए जन्म के समय माता पिताओं की, जो होने वाले माता पिता है, उनकी मानसिक आध्यात्मिक तैयारी करना बहुत जरूरी है, शारीरिक तैयारी करना भी जरूरी है, ताकि वो शरीर जैसा है वैसे शरीर का ही बालक जन्म लेगा, जो चेतना है वैसा ही बालक जन्म लेगा, जो मानसिकता है वैसा ही बालक आएगा, वही प्रकार का बालक आएगा जो माता पिता के चेतना शरीर और मन के साथ मिलता जुलता है। तो ये कंस इस प्रकार से उसका जन्म हुआ। जन्म से ही भक्तों का द्वेषी था और इतना बड़ा वीर था, इतना बड़ा वीर, एक बार दिग्विजय के निकला, दिग्विजय के निकला तो जरासंध का जो राज्य था ना, कहां पर है राज्य उनका जरासंध का, मगध देश, वो आज की तारीख में कहां पर है, बिहार। इसलिए बिहार आज कैसा है उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, जरासंध के वंशज हैं पूरे सब लोग। तो उधर तंबू लगाया उसके बिहार मगध देश के बाहर और अपने बहुत ही प्रशिक्षित पहाड़ जैसे शक्तिशाली मल्ल योद्धाओं के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। तो उतने में जो जरासंध के अखाड़े में जो हाथी था कोलयापीड, वो बहुत भयंकर शक्तिशाली हाथी था, वो साकल तोड़ के बेभान हो गया और साकल तोड़ के भागने लगा, सीधे इस अखाड़े के पास आया जहां कंस जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसके पहाड़ जैसे योद्धा थे ना, वो भी उस कोलयापीड को देख के भाग गए। इतना कोलयापीड का शक्ति का गौरव और ख्याति थी सब जगह पर, देवताओं के राज्य में भी थी। तो ये कोलयापीड आ गया देखकर ऐसे सब लोग वीर लोग भाग गए, लेकिन कंस जो है वो डटा रहा वहां पर, उसने ऐसा स्टैंस ले लिया आक्रामक और फिर आक्रमण करके सुंड पकड़ के कोलयापीड को ऐसा घुमाया उसने हवा में। सोचे आप कितना बल होगा उसके हाथ में, वो साधारण हाथी नहीं था, कोलयापीड था वो घुमा के आकाश में, बेहोश हो गया वो आकाश में हाथी, और उठा के उसका फेंक दिया तो फिर वो उसी अखाड़े में जाके गिरा जहां से साकल तोड़ के भाग के आया था। वो इतनी बड़ी ध्वनि हुई कि जरासंध को भी खबर मिली कि अरे हमारा कोलयापीड को किसी ने उठा के फेंक दिया। जरासंध भाग भाग के देखने को आया, देखा तो कुछ विश्वास नहीं हुआ कि कोलयापीड हाथी को भी कोई उठाकर फेंक सकता है, कौन है वो, उसके बारे में जानकारी किया। जब कंस महाराज आए हैं मथुरा से दिग्विजय करने के लिए, तो तुरंत उसने क्या किया, अपने दो कन्याओं को लिया और 1 कोटि घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां, और अपनी दोनों कन्याओं को दुल्हन बनाकर सजा धजा कर लेके गया और सीधे जाकर उसके तंबू में प्रवेश करके शादी का ही प्रस्ताव रखा स्ट्रेट। ऐसे वीर से युद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हाथ बढ़ाकर मित्रता करनी चाहिए। वहीं पर कंस की शादी हो गई अस्थि और प्राप्ति के साथ में। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, राजनीति। हाँ, कहां पर मित्रता करनी है, कहां पर युद्ध करना है, कहां पर वाद विवाद करना है, ये राजा को पता होता है बराबर से। अभी अस्थि और प्राप्ति के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। अस्थि मतलब हमारे पास जो है और प्राप्ति मतलब जो हमको चाहिए प्राप्त करना है। कंस जो है वो भौतिकता का प्रतीक है और उसकी पत्नियां कैसे हैं, जो है उसको मेंटेन करने में लगी हुई है और जो नहीं है उसको प्राप्त करने में मेहनत कर रही है। हमारे जीवन का पर्पस क्या होता है, जो हमारे पास है उसको हमको संभाल कर रखना है और जो नहीं है उसको प्राप्त करना है भौतिक दृष्टि से, तो ये इसका प्रतीक है। एनीवेज, फिर वो महिष्मति शहर गए, वहां पर चाणूर मुष्टिक कूट शल और तोशल इन मल्लों को उसने अपने वश में किया। उसके बाद में वो प्रवर्षण पर्वत में गए, वहां पर 20 दिन तक द्विविध गोरिला से युद्ध किया उसने, जो रामायण में भगवान का साथी था, वो सेनापति था एक, लेकिन लक्ष्मण का द्वेष करता था, वो राम का भक्त लक्ष्मण का द्वेष, इसलिए राक्षस बन गया। और प्रवर्षण पर्वत पर 20 दिन तक उसने कंस से मल्ल युद्ध किया 1-1 और उसको कंस ने परास्त किया। परास्त करने के बाद क्या किया, सबको अपना सेवक बनाया। ऋष्यमुख पर्वत जो रामायण में आता है ना, ऋष्यमुख पर्वत, वहां पर जाकर उसने केशी से जो घोड़े के रूप में था उससे युद्ध किया, उसको परास्त किया। फिर वो महेंद्र पर्वत पर गया, वहां पर कौन है, मैं जानता हूं आप लोग मंगल आरती के उठे हैं, आपको नींद भी आती होगी, लेकिन बीच बीच में मैं प्रश्न पूछूंगा आपको जगाने के लिए। महेंद्र पर्वत पर कौन है, परशुराम भगवान। 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके क्षत्रियों का संहार करके अभी वो तपस्या कर रहे हैं, यहां पर गया और चैलेंज किया परशुराम भगवान को। परशुराम का और उनका युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान ने शिवजी को त्रिपुर राक्षस को मारने के लिए अपना धनुष दिया था, विष्णु धनुष। वो धनुष त्रिपुर को मारने के बाद शिवजी ने परशुराम को दिया अपने कार्य को करने के लिए, और परशुराम ने उसको क्षत्रियों को वध करने के लिए उपयोग किया। तो उनके साथ में जब युद्ध किया तो बाद में परशुराम ने बताया कि ये धनुष लो, इसको उठा के दिखाओ। तो कंस ने उसको उठाया, उस पर प्रत्यंचा लगाया, उस समय कहते हैं कि आकाश से तारे गिर गए, धूमकेतु गिर गए, हाहाकार मच गया। उस प्रत्यंचा को खींचा ना, टणत्कार किया उसका, तो उसके बाद में इतना भयंकर ध्वनि हो गया कि ऐसे घटनाएं घटी। तो परशुराम ने उसको वो धनुष भेंट में दिया और कहा ये धनुष आगे जाकर जो तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। इस प्रकार समुद्र किनारे आए घूम के बाद, उसके बाद धनुष प्राप्त करके फिर अघासुर के साथ में समुद्र किनारे युद्ध हुआ उसका, उसको परास्त किया, वश में कर दिया उसको। फिर पूर्व दिशा में गए, वहां पर बंग देश यानी बांग्लादेश आज का, ये सब बड़े सिग्निफिकेंट है। पूर्व दिशा में गए, वहां पर अरिष्टासुर, जहां पर बंग देश में अरिष्टासुर बैल नामक बैल के रूप में राक्षस था, उसका निवास था, वहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं अरिष्टासुर ने पहाड़ उठाकर ऐसा फेंक दिया उसके ऊपर, तो कंस ने क्या किया, पहाड़ को कैच किया, दोबारा फेंका उसके ऊपर, क्या शक्ति होगी उनके अंदर। और वो उठाकर पहाड़ उसके सर पे पटका, तो उसका सर पे लगा तो उसका खून बहने लगा। फिर कंस ने एक मुक्का मारा उसको और वो बेहोश हो गया, मरा नहीं, वश में कर दिया उसको। फिर वो प्राग ज्योतिषपुर गए, वो किधर है, आसाम आज का प्राग ज्योतिषपुर। उसका ऐसा सुंदर वर्णन दिया है कैसे उसके अंदर तटबंदी थी, प्रोटेक्टिव वॉल्स, कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक वाटर फायर ऐसे पूरे नेचुरल तत्वों का उपयोग करके अपने राज्य के खिलाफ चारों तरफ ऐसी तटबंदी बनाई थी। उसमें एक नहीं बहुत राक्षस थे, राजा था नरकासुर, भौमासुर, वो कौन था, वराहदेव और भूमिदेव का पुत्र था, वो भूमि देवी का, उसका नाम था भौम। लेकिन भौम भगवान का पुत्र होने के बाद में बाणासुर का संग किया, असुर का संग किया, इसलिए वो भौमासुर बन गया। उसके साथ में धेनुकासुर, तृणाव्रत, प्रलंब, बकासुर, पुतना, सब लोग रहते थे। कितना बढ़िया संग है देखो, हाई लेवल का संग एकदम। तो नरकासुर को चैलेंज किया तो नरकासुर ने युद्ध नहीं किया, शरणागत हो गया वो कंस का। फिर शंबरासुर आया, उसने भी फाइट नहीं किया, उसने भी फ्रेंड बनाया। व्योमासुर आया, उसने चैलेंज किया तो कंस ने एक लात मारी उसको, बेहोश हो गया वो। त्रिकूट पर्वत के ऊपर उसने व्योमासुर को परास्त कर दिया। फिर भी उनके हाथों में शक्ति इतनी थी, वो नारद मुनि से मिलते हैं, पूछते हैं और कोई बचा है क्या, जरा मेरा शक्ति का प्रयोग करना है। तो वो कहते हैं कि आपके लिए बाणासुर नाम का व्यक्ति है, उसके 1,000 हाथ हैं। उसने शिव जी से प्रार्थना करके, तपस्या करके 1,000 हाथ मांगे थे, तो वो आपके लिए बहुत सुंदर योद्धा है। तो वो शोणित नगर में थे, वहां पर उसने जाकर पृथ्वी को लात मारी तो एक होल क्रिएट हो गया, गड्ढा, पाताल लोक तक तो गया वो। तो बाणासुर ने कहा, वो गड्ढे में गया और कंस को कहा मुझे उठा के दिखाओ। तो कंस है ना, वो पाताल तक के गड्ढे में गया और उसने बाणासुर को उठाया, और इस प्रक्रिया में 7 नरक लोक नष्ट हो गए, विध्वंस हो गया उसका। इतना भयंकर युद्ध उनका हुआ ना, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 7ों नरक जो है विध्वंस हो गया। फिर शिव जी को आना पड़ा बीच में, बोला बस बस अभी आप लोग झगड़ा मत करो, आप दोनों तुल्य बल हो, मित्रता करो। तो उन्होंने दोनों के साथ में सुलह करके मित्र बना दिया उनको। फिर पश्चिम में गए वो और वत्सासुर का उन्होंने दमन किया। फिर म्लेच्छ देश यानी पश्चिम जगत में गए, काल यावन से गदा युद्ध किया। एक भार है ना, एक भार मतलब 40 किलो का होता है, शायद 100 किलो का होता है, एक मण 40 किलो का होता है, एक भार शायद 100 किलो का होता है। ऐसे 1 लक्ष भार की गदा लेकर कालयावन ने युद्ध किया। तब जाकर विष्णु धनुष को उठाकर कंस ने उसके साथ युद्ध किया। सोच सकते हैं क्या, गदा 1 लाख भार वाली गदा, मतलब 1 कोटि किलो वजन हो गया उसका। वो उसको उठाकर युद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, उसको एकदम ऐसा अट्रैक्टिवली घुमा रहे हैं। तो इन्होंने विष्णु धनुष से कालयावन को प्राप्त किया। फिर लास्ट में अमरावती गए, मतलब स्वर्गलोक में, हमारे महाराष्ट्र के नहीं। और अमरावती जाकर उन्होंने देवताओं को एन मास चैलेंज दिया, और देवताओं का नेतृत्व में इंद्र जी आए, इंद्र के साथ में सारे देवताओं को अकेले कंस ने परास्त कर दिया। इस तरह से केवल दिग्विजय नहीं किया, सभी लोगों का दिग्विजय भी किया उसने। ऐसा ये भयंकर शक्तिशाली महान पराक्रमी दिग्विजयी कंस था, साधारण राक्षस नहीं था वो। तो आप देख सकते हैं कि ये कंस कौन था। जिन जिन राक्षसों का कृष्ण भगवान ने वध किया, इस सारे राक्षसों को कंस ने ऐसे ऐसे हराया था। कहते हैं कि 1,000 मील तक तृणावर्त ने भगवान को उठाया था, लेकिन कंस को 1 लाख योजन आकाश में उठाया था उसने युद्ध के समय तृणावर्त को। और वहां से तृणावर्त को कंस ने जमीन पर पटक दिया था और वो बेहोश हो गया था और फिर वश में हो गया था। भगवान ने फिर इतना प्रयास नहीं किया था जितना कंस के साथ में हुआ था। तो फिर क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होने पर राक्षसी व्यक्तियों को बहुत अहंकार होता है, सबको कष्ट देना शुरू करते हैं। फिर उनके आधार से बाकी लोग भी कष्ट देना आरंभ करते हैं कि हमारा बॉस इतना पावरफुल है तो हम भी उसके सहारे लोगों को आतंक करेंगे। इस तरह से पृथ्वी का फिर पापों का भार इतना बढ़ गया। तो ये उग्रसेन था ना, उग्रसेन महाराज, इसके भी खिलाफ उसने बर्तनों शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ा क्या हो गया बीच में, कंस का बैड इमेज हो गया, सब जगह पर कुख्याति हो गई उसकी। अभी हम आपको दूसरी कहानी बताते हैं, एक प्रसंग यहां पर समाप्त होता है। दूसरा प्रसंग ऐसा है कि पृथ्वी पर जब ये पापों का भार राक्षसों का बढ़ गया कंस के नेतृत्व में, तो पृथ्वी बहुत पीड़ित होकर गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गई। यहां से हमारा दशम स्कंद शुरू होता है। और ब्रह्मा जी के पास गई रो रो कर, गाय बनकर रो रही है, पुकार रही है। ब्रह्मा जी पूछते क्या हुआ, तो संक्षेप में अपना दुख वर्णन करती है। ब्रह्मा जी उसको लेकर, देवताओं को लेकर क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। वहां पर पुरुष सूक्त नामक एक श्लोक संग्रह है, उसको लेकर भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान कहां पर है, क्षीर सागर में है। क्षीर सागर क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर का वैकुंठ है, वो इसी के अंदर है एक वैकुंठ क्षीर सागर, उसमें शिरोधक शाही विष्णु विराजमान है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वो फिर दर्शन देते हैं। कृष्ण बुक में आप पढ़ेंगे, भागवत में तो ऐसा वर्णन दिया है कि शिरोधक शाही विष्णु ने ही उनको बताया क्या होगा आगे, मैं आऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन गर्ग संहिता में अलग कल्प भेद के रूप में बताया है कि वो शिरोधक शाही विष्णु वो सारे देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ, गाय के साथ पृथ्वी को लेकर गौलोक धाम जाते हैं। गौलोक धाम जाते हैं तो जो विष्णु उनको लेकर जा रहे हैं उनको श्री हरि का दर्शन होता है। गौलोकेश्वर श्री हरि जो परम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम परात्पर भगवान, तो वो वहां जाते ही जो विष्णु लेकर गए उनको, वो उस हरि के शरीर में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद भयंकर आतंक ऐसे मतलब बहुत तेज वाले नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो भी उनके शरीर में, हरि के शरीर में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु रामचंद्र अपने भाइयों के साथ में, असंख्य वानर सेना के साथ में शस्त्र अस्त्र धारण करते प्रकट होते हैं, और सारे लोग श्री हरि के अंदर विलीन हो जाते हैं, सब देख रहे हैं देवता लोग। उसके बाद यज्ञ नारायण अपने दक्षिणा पत्नी के साथ में, यज्ञ पुरुष है ना, उनकी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट होते हैं, श्री हरि के शरीर में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद में नर नारायण ऋषि प्रकट होते हैं, हरि के शरीर में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद में वो श्री हरि देवताओं से बात करना आरंभ करते हैं। वो कहते हैं मैं इन राक्षसों का संहार करने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला हूं, आप सब लोग यदुकुल रुष्णिकुल में जन्म लेना और मैं आकर पृथ्वी का पापों का भार कम करूंगा। वेद जो है वो मेरे शब्द होंगे, ब्राह्मण मेरा मुख होंगे और गौ मेरा शरीर होगा, गाय। उस समय राधा रानी इतनी दुखी हो गई और दुखी होकर वो बेहोश हो गई, तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने राधा रानी को पूछ, होश में लाया सब लोग ने मिलकर, ये सीन कहाँ चल रहा है, आप लोग सब लोग गोलोक धाम में है ना अभी इस समय, ये सीन गोलोक में चल रहे हैं, पूछना जरूर है बीच बीच में कि आप कहां पर हो, अभी इस वक्त हम गौलोक में हैं। तो गौलोक में राधा रानी को वो होश में लाते हैं, फिर भगवान पूछते हैं राधा रानी क्या हो गया, आप बेहोश क्यों हो गए। वो कहते आप ही तो ऐलान कर रहे हैं कि आप जाने वाले हो, इसलिए अभी आपके आने वाले होने वाले क्या कहते विरह को सोचकर मैं बेहोश हो गई। तो भगवान ने कहा अरे ऐसे नहीं है, मैं आपको भी ले जाऊंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा। बोले मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जहां पर श्री वृंदावन गोवर्धन और यमुना नहीं है वहां पर मैं नहीं आती। तो राधा रानी की इस दिव्य इच्छा को समझते हुए देखते हुए भगवान ने गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा पृथ्वी पर भेज दिया, उस ब्रह्मांड पर, अनंत ब्रह्मांड है ना, जिस ब्रह्मांड से गौ माता आए, ब्रह्मा जी आए, उस ब्रह्मांड पर उन्होंने भेज दिया उसको 84 कोस का हिस्सा, और पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना को आदेश दे दिया आप जाओ। तो यथावकाश गोवर्धन रोणगिरी के पुत्र के रूप में हिमालय में जन्म लिए और फिर बड़ी लीला करके वो वृंदावन में स्थापित हो गए। और यमुना जी अपने 100,000 पहिए वाले दिव्य रथ में विराजमान होकर अपनी लाखों सखियों के साथ में, इसमें करोड़ों सोने की घंटियां, रत्न जड़ित घंटियां लगी हुई है, ऐसे सुंदर दिव्य 100,000 पहियों वाले रथ में बैठकर गौलोक वृंदावन, विशिष्ट वैकुंठ द्वारका, अयोध्या मथुरा, फिर अनंत वैकुंठ ब्रह्म ज्योति वाले, फिर विरजा नदी, फिर ब्रह्मालोक करते 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 पृथ्वी पर विराजमान हो जाती है। और जन्म कैसे लेती है, सूर्य और उषा के पुत्री के रूप में जन्म लेती है और पृथ्वी पर विराजमान हो जाती है। फिर अभी ने आपको थोड़ा आगे का बताया, लेकिन भगवान आगे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं वसुदेव और देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा, जो पहले युग में कश्यप पर अदिति थे। मेरे लीला अवतार बलराम जी रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। जो रोहिणी कौन है? जो कश्यप मुनि की एक पत्नी है, 27 पत्नियों के साथ में एक पत्नी है कद्रु, उस कद्रु के गर्भ से सर्प वंश का निर्माण हुआ। तो कद्रु ही रोहिणी के रूप में अवतरित हुई। और कद्रु के प्रथम पुत्र कौन है बताइए? अनंत शेष, उसके बाद में वासुकी, उसके बाद में तक्षक और महान महान कालिया जैसे राक्षस, जैसे सर्प उसके गर्भ से जन्म हुए। तो वो कद्रु जो है वो रोहिणी के रूप में अवतार लेती है भगवान की लीला में। फिर भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी, मेरी लक्ष्मी जो है वैकुंठवासिनी, वो विदर्भ में भीष्मक की पुत्री के रूप में, रुक्मिणी के रूप में जन्म लेगी। फिर पार्वती देवी जाम्बुवान की पुत्री बनकर जाम्बुवती का रूप में अवतार लेगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी लक्ष्मणा देवी के रूप में जन्म लेगी। और गंगा देवी मित्रविंदा बनेगी। भगवती लज्जा देवी जो है वो भद्रा के रूप में जन्म लेगी, जो मेरी अष्टमे से एक पत्नी बनेगी। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न बनेंगे। ब्रह्मा जी अनिरुद्ध बनेंगे, प्रद्युम्न के पुत्र। और द्रोण नाम के वसु जो है वो नंद महाराज बनेंगे। धरा देवी यशोदा बनेगी। सुचंद्र वृषभानु महाराज बनेंगे। कलावती कीर्तिदा बनेगी। और फिर भगवान ने बहुत विस्तार में गोपियों का वर्णन दिया कि कौन कौन सी गोपियां, किस किस प्रकार की गोपियां जन्म लेंगी, उसका गर्ग संहिता में विस्तार में वर्णन है। जैसे कि कुशलवासिनी, मिथिलावासिनी, समुद्रवासिनी, ऋषिचारी, श्रुतिचारी, ऐसे कई प्रकार के गोपियों के वर्ग हैं, वो सब जन्म लेंगे ऐसे भगवान ने बताया। बाद में बताया कि अष्टवसु में से जो प्राण वसु है वो शूरसेन बनेंगे। वो कौन थे? वसुदेव के पिताजी। जो ध्रुव नाम के वसु है वो देवक बनेंगे, जिनकी कन्या देवकी होगी। वसु नाम के एक वसु होंगे जो उद्धव जी बनेंगे। दक्ष नाम के प्रजापति अक्रूर बनेंगे। मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। प्रहलाद जी सात्यकी बनेंगे। और सबसे श्रेष्ठ वसु, वसुओं के नेता भीष्मदेव बनेंगे। अग्निदेव द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लेंगे। और शंकर भगवान अश्वत्थामा के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय भगवान ने योग माया को, अपनी बहिरंगा शक्ति को भी बुलाया और कहा कि आपका एक विशेष काम होगा। जब मेरे माता देवकी का सातवां गर्भ के रूप में मेरे बड़े भाई, मतलब मेरे पहले लीला अवतार बलराम जी के रूप में स्थापित हो जाएंगे, तो उनको आपको वहां से संकर्षित करके उनकी जो चिरंतन माता रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित करना है। और इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको वरदान देता हूं कि आप मेरी बहन बनोगी, मेरे बहन बनने का सम्मान मिलेगा। और जब मैं जन्म लूंगा तो नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ में मेरे साथ आप भी जन्म लोगे, इस प्रकार से मेरी बहन बनोगी। आपको समझ में आया? पूरा योग माया को उन्होंने अपनी सेवा में लगा लिया और बता दिया कि आपका फिर इस सेवा के कारण आप पूरे ब्रह्मांड में बहुत पूजित हो जाएंगी। शारदा, चंडिका, भगवती ऐसे अनंत नामों से प्रसिद्ध हो जाएंगी। और आपकी, आप दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। और ये दुर्ग जो है भौतिक दुनिया का, इसकी अधिष्ठात्री आप बनोगी। आपके अधिष्ठापन में आपके क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंस, आप अधिकार के अंदर त्रिगुण काम करेंगे, त्रिगुण की अधिष्ठात्री आप होंगी। और इस दुनिया में सभी जीव जो भगवान के मेरे खिलाफ काम करेंगे उनको त्रिगुणों में बांध के रखने का कार्य करोगी, बहुत शक्तिशाली होंगी। और जो लोग इससे मुक्त होकर मेरी भक्ति करना चाहते हैं उनको भी सहायता करोगे आप। इस प्रकार से बहुत वरदान दिए योग माया को। और फिर यथावकाश क्या हुआ? यथावकाश देवक शूरसेन सब प्रकट हो गए। शूरसेन को अनेक पुत्र पुत्रियां हुई, उसमें से एक थी कुंती देवी, एक थे शूरसेन। और शूरसेन को विवाह होकर वसुदेव का जन्म हुआ। अभी देखिए, जब वसुदेव का जन्म हुआ ना शूरसेन के द्वारा, अब जानते हैं ये वंश जो है कुरु वंश ययाति से आरंभ होता है। ययाति के बाद में यदु इनके कुल में जन्म लेते हैं और उसमें शूरसेन जन्म लेते हैं, उसके पुत्र के रूप में वसुदेव आते हैं। जैसे वसुदेव का जन्म होता है, जानते हैं क्या हुआ? कोई बता सकता है? नगाड़े बजाए गए आकाश में देवताओं के द्वारा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अनक दुंदुभी। दुंदुभी मतलब वो एक वाद्य होता है नगाड़े जैसा, बहुत देवताओं के पास बहुत सारे भेरी और बहुत सारे अलग प्रकार के ड्रम्स होते हैं, वो आनंद में बजाते हैं उसको। तो उन्होंने वसुदेव के जन्म पर बहुत सारी दुंदुभियां बजाई, क्योंकि वो जानते थे, दो प्रकार से उनको गौरव जानते थे कि इन्हीं के पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान आने वाले हैं और ये सत्यवचनी के रूप में प्रसिद्ध होने वाले हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार के सत्यवचनी होंगे, पूरे ब्रह्मांड में प्रख्यात होंगे, इसलिए पहले से ही उनके लिए उन्होंने स्वागत किया। और हम जानते हैं वसुदेव का देवकी के साथ विवाह तय हुआ। किसने विवाह का अरेंजमेंट किया? ये दुनिया के विवाह विवाह कौन अरेंज करते हैं उसका जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये विवाह किसने अरेंज किया जानना बहुत जरूरी है। बताइए, नारद मुनि ने प्रपोजल दिया था शूरसेन को कि देवक राजा की जो कन्या है देवकी, वो तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत पर्याप्त, क्या कहते हैं, उस योग्य है। चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया के साथ विवाह किसने तय किया था? बहुत जरूरी है समझना। उनका नाम था वनमाली। वनमाली नाम के ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णुप्रिया के साथ में तय किया था। एनीवेज, तो इन दोनों का विवाह तय होता है, विवाह संपन्न होता है, और उस समय कंस की कुख्याति बहुत हो गई थी। तो उस समय कंस ने क्या किया, अरे बड़ा बहुत ज्यादा बदनामी हो गया है, थोड़ा सा उसको सोशल रिफॉर्मेशन करना चाहिए। वो राजनीति लोग कैसे होते हैं ना, जैसे इलेक्शन आ जाते हैं ना, तो फिर सभी वो तिरुपति और श्रीरंगम सब मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, पंडरपुर सब जगह पे पेपर में फोटो आता है कि वो नेता ये मंदिर में भी गया, वो मंदिर में भी गया। तो आचार्यगण बताते हैं, जब भी कूटनीति नीति वाला राज राजनीति व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होता है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका वो जब अधिक ज्यादा अच्छे कार्य करने में दिखाई पड़ता है, भगवान के मंदिर में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो यह मत समझना कि वो भक्त बन गया। वो केवल अपनी प्रतिमा को सुधारने के लिए, जनमत को सुधारने के लिए ऐसे कार्य करते रहता है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, उसमें कोई भक्ति भक्ति नहीं होती है। इसलिए आम जनता को उसमें जाकर भयकने की जरूरत नहीं, अरे बाप रे इतना बड़ा खराब नेता आज एकदम भगवान का भक्त बन के संत बन गया, अभी तो समृद्धि आ जाएगी सब जगह। नहीं, वो केवल वोट लेने के लिए करते रहता है। उसी मूड में कंस ने क्या सोचा, चलो मैं मेरी बहन का सारथी बन जाता हूं, थोड़ा जन्म सुधर जाएगा। तो लोगों को, लोगों के सामने जाकर ना सारथी को उतार दिया उसने। जिस सारथी, जिस रथ पर नए नए नवपरिणित नवविवाहित वसुदेव और देवकी बैठे हुए हैं, उनकी बारात जा रही है, ब्राह्मण लोग गीत गा रहे हैं, वंदी अलग अलग प्रकार के गायक लोग अपना अपना गायन कर रहे हैं, सूक्तों का उच्चारण हो रहा है, दिव्य सुंदर वाद्य बज रहे हैं, बहुत पवित्र वातावरण है, इसमें ये सारथी को उतार देते हैं और खुद बैठ जाते हैं और घोड़ों को लगा अपने हाथ में लेते हैं। लोग सब वो देखते हैं, वाह वाह करने लगते हैं, बड़े प्रेम से। आप सोच सकते हैं इतना प्रसन्न वातावरण है, शंख बज रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, और कंस अपने हाथ में लेकर मंद मंद गति से उन घोड़ों को चला रहा है और वो बारात अपने घर ले जा रहा है। अचानक सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वर्षा हो रही थी बहुत सारी, तो भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। तो भगवान को उन्होंने पूछा क्या करोगे, बोले मैं गोवर्धन को उठाऊंगा। लोग बोले है क्या उठाओगे गोवर्धन, किसी को पता नहीं था उस समय, आज बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा आगे। अरे देखो देखो अभी देखो वो पुलिस है ना, ऐसा खींचेगा ना, अभी पर्वत ऊपर जाएगा, वो अपना उंगली लगाएगा उसको, सबको पता है। लेकिन विशेष बात समझने की है, उस समय ये एक बहुत ही अप्रिय भयंकर आश्चर्यकारी घटना के रूप में घटना प्रकट हो गई। सावधान कंस, जिस बहन का रथ तुम चला रहे हो उसी के आठवें पुत्र आठवें गर्भ से आपका वध होगा। आप भागवत का श्लोक पढ़ेंगे ना, उसमें पुत्र नहीं लिखा है, उसमें गर्भ लिखा है, अष्ट गर्भ के अष्टम गर्भ लिखा है। वहीं पर देवताओं ने कंस को कंफ्यूज करने का प्लान शुरू कर दिया था। अभी देखिए, एक पापी व्यक्ति अच्छे कार्य करते हुए तब तक नजर आता है जब तक उसका हित अबाधित है। जब उसके हित पर बाधा आती है, तुरंत उसका समाज सेवा का पुण्य कार्य सब खत्म हो जाता है। एक क्षण के अंदर अभी बहन के इतने तीव्र हृदय पूर्वक प्रेम से रथ चला रहा है, एक क्षण के ऊपर नई नई नवेली दुल्हन के बाल पकड़ता है वो, तलवार निकालता है, उसका गर्दन छाटने का प्रयास करता है। प्रयास क्या कर रहा है, वो काटने वाला था ऐसे। वो तलवार जो थी ना, वो तलवार की केवल चमक से सारे देवता लोग कांपते थे, इतनी तलवार उसकी पूरे 14 लोक में प्रसिद्ध थी। उस तलवार से उसने कितने विजय युद्ध युद्ध में विजय प्राप्त किया था। वो तलवार एक अबला को सर काटने के लिए यूज कर रहे हैं, इतनी राक्षस की मति भ्रष्ट होती है। तब वो ये सोचने रहा है कि मेरे आगे ख्याति क्या होगी, कि मैंने एक अबला का वध कर दिया, अपनी बहन का वध कर दिया, वो भी शादी के दिन किया, कितने प्रकार की बदनामी होगी। लेकिन जब क्रोध आता है, स्वार्थ में बाधा आती है, सारी मति राक्षस की भ्रष्ट हो जाती है। तत्क्षण तलवार निकालता है तो हवा की गति से वसुदेव उसका हाथ पकड़ते हैं। वसुदेव का एक गुण है कि वो भयंकर प्रसंग में भी शांत रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज की तरह उनकी ख्याति है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा हाथ पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बाल पकड़े हुए वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये सीन में अभी डायलॉग शुरू हो रहा है, बहुत सारा समझा रहे हैं। अरे आप इतने बड़े वीर हो, आपकी बहन की शादी हो रही है, नई नई दुल्हन है, कम से कम अभी वध नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपके खिलाफ होगा, आपके वीर को शोभा नहीं देता, ऐसा मत कीजिए, आप उसको जीवन दान दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता उसको, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है उसको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। तो वसुदेव विचार करते हैं कि अभी इसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना पड़ेगा। कैसा है ना, हम जब प्रचार भी करते हैं ना, तो वो लोगों को देखकर करते हैं। बहुत पैसे वाला बिजनेसमैन होगा, ज्यादा श्लोक नहीं बताते उसको, उसको उसके बिजनेस रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो बताना शुरू कर देते हैं। कोई ब्राह्मण होगा अच्छा पंडित टाइप का, तो उसको फिर श्लोक बताते हैं, बहुत सारा चीज बताते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कुर्सन के लिए, हाथ पकड़ा हुआ है, सोच रहे हैं, और आदमी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, आपको भय किससे है, मेरे इस पत्नी को होने वाले 8वें गर्भ से आपको भय है। मैं आपको वादा करता हूं कि होने वाले हर एक पुत्र को, हर एक संतान को आपके सुपुर्द कर दूंगा। तुरंत हाथ नीचे आ जाता है, क्यों, क्योंकि कंस को भी वसुदेव के सत्य वचनी होने पर बहुत विश्वास था कि ये व्यक्ति जो है अपने शब्द को हमेशा मानेगा, मतलब पालेगा, उसको कभी वचन को वो टालेगा नहीं। तलवार नीचे करता है, म्यान करता है, और तुरंत रथ से उतर के घर चला जाता है। अभी आप सोच सकते हैं ना, अभी एक आकाशवाणी होते सब सब श्लोक पठन बंद हो जाता है एकदम, एवरीबडी क्वाइट, उसके बाद में कोई श्लोक वो बोलता नहीं है, चुपचाप रथ जो है अपने वसुदेव के घर चला जाता है। और ये बड़े त्रस्त होकर ना, एकदम डिस्टर्ब होकर कंस अपने घर चला जाता है, और वहां से वसुदेव यथावकाश देव की गर्भवती होती है, उसको पुत्र होता है, उसका पुत्र नाम रखते हैं कीर्तिमान, प्रथम पुत्र का नाम। लेकिन वसुदेव का वर्णन किया है, वसुदेव बिल्कुल भी उस पुत्र से आसक्त नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि कंस जो शायद इसको वध भी कर सकता है, रख भी सकता है, मुझे मेरा कर्तव्य करना चाहिए, शब्द का पालन करना चाहिए, इसलिए नवजात बालक का नाम रखते ही कंस के दरबार में उसको लेके आते हैं। कंस को देख के आश्चर्य होता है उसको, अरे कितना महान सत्यवचनीय आदमी है ये, बाकी चीजों में सत्यवचन रखना तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अपने पुत्र का वध भी हो सकता है फिर भी अपने सत्य वचन पर टिका हुआ व्यक्ति है। तो उसको देखकर कंस बड़ा प्रभावी, मतलब प्रभावित हो जाता है, तो वाओ ग्रेट, आप इतने महान हो, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया आपको देखकर कि आपने अपने पुत्र का जीवन का भी शायद अहित हो सकता है ये सोचकर भी आपने सत्य वचन स्वभाव को आपने छोड़ा नहीं। कोई बात नहीं कंस, निर्भय हो जाओ, मैं आपके बालक का अभय देता हूं, जाओ कीर्तिमान को लेकर चले जाओ। तो बड़े खुश होकर वसुदेव जी वापस कीर्तिमान को लेकर घर लौट जाते हैं। और जैसे ही वसुदेव जी वहां से जाते हैं, वहां से कौन आता है, नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि कंस को कहते हैं कि देखो, तुमने वसुदेव के इस पुत्र को वापस भेज दिया, लेकिन तुम देवताओं की वाम वाणी यानी उल्टी वाणी को समझते नहीं हो। अभी 8 पुत्र का 8 गर्भ के बारे में बताया आपको कि 8वां गर्भ, लेकिन कौन सा गर्भ पहले, कौन सा गर्भ सेकंड, कौन सा गर्भ थर्ड, ये कैसे आप जान सकते हो। ये लो, ये कमल पकड़ो अपने हाथ में, ये कमल हाथ में पकड़ा दिया और बोले कि ये पंखुड़ी पकड़ो, इसको पहला मानो, अब बताओ 8वां पंखुड़ी कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे से बहुत गंभीर म्यूजिक बज रही है, टें 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 टें। कंस गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नारद मुनि ने दूसरे दूसरी पंखुड़ियों को पकड़ाया और कहा कि इसको पहले मानो अभी और फिर गिनो, फिर ठक आठवीं पंखुड़ी, और ऐसे बहुत पंखुड़ियाँ गिनवाई और बोला अभी बताओ आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस पूरा कंफ्यूज हो गया, तो कंस ने उस बार कहा आज मुझे गुरु का महत्व तो समझ में आया कि गुरु क्यों करना चाहिए, दिस इज वाई वी शुड टेक गुरु। ऐसे ही कंफ्यूजिंग प्रसंग में गुरु ही काम आते हैं। तो फिर कंस कहते हैं कि फिर आप मुझे बालकों का वध करने के लिए कह रहे हैं। बोलते नारायण नारायण, मैं नहीं जानता क्या करना है, आप ही सोच लो। लेकिन इनडायरेक्टली वो हिंट देके जाते हैं कि आपको सबका वध करना है। अभी आप कहेंगे कि नारद मुनि इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने कंस जैसे राक्षस को बाल हत्या के लिए प्रवृत्त क्यों किया? और आचार्यगण बताते हैं कि नारद ने नवजात बालकों को वध करने के लिए कंस को प्रवृत्त किया, तो एक तरह से पाप किया ना। और पाप का कैसा गुणधर्म होता है कि आप पाप नहीं करो, दूसरे को पाप को प्रवृत्त करो तो भी आपको पाप लगता है उसका, हाँ, बिकॉज यू आर इंस्टिगेटर। तो आचार्य बताते हैं कि अगर आप सत्कर्म करते हैं लेकिन सत्कर्म भी बुरे उद्देश्य से करते हैं तो उससे पाप लगता है, और आप दुष्कर्म करते हैं लेकिन वो अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसमें कोई पाप पाप का रिएक्शन नहीं होता है, पाप फल प्राप्त नहीं होता है। तो नारद जी को पाप कैसे नहीं लगा और नारद जी ने ऐसे क्यों किया? आचार्यगण 3 कारण बताते हैं। नारद मुनि ये 6 बच्चों का इतिहास जानते थे। वो इतिहास क्या है? वो इतिहास यह है कि उर्ण नाम का एक राजा थे, उसको 6 बच्चे थे, उर्ण राजा, हाँ? तो उसको 6 बालक थे, उन्होंने ब्रह्मा का तिरस्कार किया, तो फिर वो हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, कालनेमी हिरण्यकशिपु का पुत्र था, उसके पुत्र बने हिरण्यकशिपु। उन्होंने इस 6 बालकों को शाप दिया उन्होंने कि तुम्हारा तुम्हारे पिता के हाथ से ही मृत्यु हो जाएगा। तो यथावकाश कालनेमी कंस के पुत्र बने, कालनेमी राक्षस, उन्होंने बताया था आपको ना, समुद्र मंथन में विष्णु से युद्ध किया, कालनेमी को भगवान ने वध किया, शुक्राचार्य ने उसको जीवित कर दिया, फिर तपस्या किया, फिर वो कालनेमी कंस के रूप में उसने जन्म लिया प्रमिला और उग्रसेन के गोद में। फिर कालनेमी ने उग्रसेन के पुत्र के रूप में जन्म लिया कंस के रूप में, और फिर ये 6 बालक को उसने आकर वध कर दिया। तो उसको पता था कि ये 6 बालक जो है इनको नवजात रूप में ही वध होना है, इनका इनका उद्धार होना है, इनको पाप से मुक्त होना है, तो इनको देवकी के गर्भ से जन्म होते ही मृत्यु होना है उनका, और उसका मृत्यु होने के बाद में उनका उद्धार होने वाला है, ये वो जानते थे। तो कंस जो है इनको पाप क्यों लगा? क्योंकि ये 6 बालकों का इतिहास कंस को पता था। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर डेवलपिंग द सिंफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ही वॉन्टेड डेम टू गेट रीड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड रीच देयर डेस्टिनी। मतलब जन्म होके भौतिक दुनिया का असर उनको होने के पहले ही नारद मुनि की इच्छा थी कि वो मुक्त हो जाएं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएं। उनको पता था कि उनको मारने के बाद में वो सुतल लोक जाएंगे, कंस के द्वारा मृत्यु होने के बाद में, फिर उसके आगे जब कृष्ण भगवान द्वारका जाएंगे या मथुरा जाएंगे और उनकी माता उनको 6 पुत्रों को लाने के लिए कहेगी, तब कृष्ण सुतल लोक जाएंगे और ये 6 बालकों को लेकर फिर वो परम धाम जो चले जाएंगे। संक्षेप में कहानी ऐसी है कि जब देवकी माता वसुदेव को भगवान कृष्ण मिले तो देवकी ने उन्हें अपने मरे हुए 6 पुत्रों के बारे में इच्छा प्रकट की, तो भगवान फिर सुतल लोक गए हैं और उन्होंने वहां से वो 6 बालक जो कंस के हाथ में मृत्यु प्राकर पहुंच गए थे उनको उन्होंने वहां से लाया और अपनी माता को प्रस्तुत किया। और क्या हुआ उसके बाद में? जिस स्तन से कृष्ण भगवान ने जन्म के समय स्तनपान किया था वो स्तन कृष्ण का महाप्रसाद था, उसी स्तन देवकी के स्तन से ये 6 बालकों ने दुग्ध प्रदान किया है, स्तनपान किया है, क्योंकि जैसे ही भगवान ने इन 6 बालकों को वहां पर प्रकट किया वात्सल्य जागृत हुआ देवकी के मन में और उन्होंने ही 6 बालकों को स्तनपान कराया। तो कृष्ण के द्वारा महाप्रसाद बनाए गए स्तन से दुग्धपान करके सीधे वो गौलोक धाम चले गए। ये आगे होने वाला है, ये कंस, ये नारद मुनि को पता था, इसलिए नारद मुनि ने कंस को इनडायरेक्टली इन 6 बालकों का वध करने के लिए प्रवृत्त किया। आपको समझ में आया सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से एक के बाद एक, इसके बाद क्या हुआ, तुरंत वसुदेव और देवकी को कंस ने अरेस्ट कर लिया और काल कोठड़ी में बंदिस्त कर दिया, जिसके 7 दरवाजे थे और अंदर के कोठड़ी में उनको बंदिस्त कर दिया। और पहले बालक को जो कालने में राम के उसको वरदान दिया था, अभय दान दिया था, उसी को खींचा और उसी जेल के दरवाजे में पटक के उसका वध कर दिया। आप सोच सकते हैं, एक माता का जब गर्भपात होता है प्रेगनेंसी में तो कितना दुख होता है। कई दिन तक हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, इतना दुख होता है माता को। उसके बाद में जब जन्म होकर के बालक मर जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बालक का दर्शन होकर फिर मृत्यु हो गई तो बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि नेचुरल डेथ और कोई पीलिया हो गया उसको, या कोई हार्ट खराब था, या कोई ऐसे ही वेंटिलेटर पे गया और नेचुरल डेथ हो गया, तो एक बात है। लेकिन तुम्हारा ही खुद का भाई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथों से छीन कर, अगर निर्दयता से उसको शिला पर पटक कर उसको छिन्न विच्छिन्न खून और मांस से लथपथ करके अगर मृत्यु करा रहा है उसका, तो एक माता को कितना कष्ट होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे कमरे में लेके गया और वहां पर उसको मृत्यु कर दी, उसकी आंखों के सामने किया उसने। फिर भी प्रश्न पूछते लोग कि देवकी ने फिर आगे के बच्चों को जन्म क्यों दिया, उनको पता था कि आएगा मारेगा उनको। कॉमन सेंस है ना, आप लोग अगर होते बोलते ठीक है, ना रहेगा ना बास ना बजेगी बांसुरी, ना होंगे पुत्र ना होगा उनका वध, हम लोग ऐसे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कारागृह में रह के बार बार देवकी ने वसुदेव ने पुत्रों को जन्म क्यों दिया, उसका कारण ये था कि उनको पता था कि 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं, और जब तक भगवान के अवतार लेने का समय नहीं आएगा, भगवान के अवतार लेने का नंबर नहीं आएगा, उसके पहले 7 पुत्र नहीं होंगे, तो 8वां पुत्र भगवान के रूप में कैसे आएगा, मतलब भगवान 8 के पुत्र के रूप में कैसे आएंगे। तो भगवान के आकाशवाणी भगवान ने जो करवाई देवताओं से वो सच करने के लिए और भगवान के इस विश्व में अवतार के प्रवेश के लिए योग्य स्थिति बनाने के लिए देवकी वसुदेव ने इतना कष्ट सहन किया। अपने आंखों के सामने 6 बालकों का देहांत उन्होंने देखा। एक सेवा भी इस प्रकार की हो सकती है, इतना सारा कष्ट सहन करके देवकी माता भगवान की सेवा कर रही है, भगवान के अनुकूलता के लिए, भगवान के आविर्भाव के लिए, अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए इतना बड़ा कष्ट सहन कर रही है। सोचिए आप, यमराज जैसे भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल पापियों को दंड देने का सेवा कर रहे, जो कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं विशेष भगवान के, क्या कहते हैं, एंट्रस्टेड, विश्वासु भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान के लिए कठिन कार्य भी स्वीकार कर सकते हैं। और हमारे भी संप्रदाय में प्रभुपाद जी ने कई गिने चुने भक्तों को बहुत कठिन कठिन कार्य दिए थे, मतलब नो स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट ओनली सेवा। कुछ सन्यासियों को सन्यास देने के बाद में ईंट गिनने के लिए लगाया था उन्होंने, कंस्ट्रक्शन काम में लगाया था। सन्यासी में लोग क्या सोचते हैं कि हम सब जगह प्रचार करेंगे, यात्रा करेंगे, ग्रस्तों के घर जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे, लोगों को शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन उनको उन्होंने कंस्ट्रक्शन काम में लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सबसे समर्पित भक्त होते हैं उनके लिए भगवान जो है कठिन से कठिन, जो कोई नहीं कर सकता, ऐसी सेवा दे देते हैं, एंट्रस्ट कर लेते हैं। तो देवकी उस प्रकार के भक्त हैं, तो इतनी कठोर, इतनी कठिन, इतनी पीड़ामय सेवा उसने स्वीकार की और अपने आंखों के सामने बालकों का छिन्न विच्छिन्न देह होते हुए दर्शन किया उसने। उसके बाद में आप जानते हैं कि 7वें गर्भ के रूप में भगवान के प्रथम लीला अवतार अनंत शेष बलराम जी प्रविष्ट हुए और तभी योग माया को आह्वान किया गया। 7वां गर्भ स्थापित हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। अचानक एक दिन देवकी को लगा कि अरे गर्भाशय से गर्भ गायब हो गया। सब जगह खबर फैल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी बड़ी दुखी हो गई, लेकिन योग माया ने अपने सूक्ष्म बल से उस गर्भ को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि बीच में जब वसुदेव को प्रथम पुत्र हुआ था, उसके बाद में रोहिणी भी उनकी एक पत्नी है। वसुदेव को कई सारी पत्नियां थी। एक जगह मैंने पढ़ा था कि उनको 350 पत्नियां थी, क्योंकि राजा थे वो। तो उनकी एक प्रधान पत्नी है रोहिणी देवी। तो रोहिणी देवी भी गर्भवती हो गई यथावकाश, और रोहिणी बलराम जी की चिरंतन माता है, इटर्नल मदर। तो वो गर्भवती हुई, तो वसुदेव ने सोचा कि कंस का भय इसको भी हो सकता है, इसके पुत्र को भी वो नाश कर सकते हैं। इसलिए चुपचाप उन्होंने अपने मित्र नंद महाराज, जो उनके चचेरे भाई भी हैं, उनके साथ संपर्क करके अपनी पत्नी को अपने मित्र के घर में चुपचाप भेज दिया, ताकि उसकी गर्भावस्था जो है वो सुरक्षित रूप में संपन्न हो जाए। तो रोहिणी देवी कहाँ थी? नंद महाराज के पास थी, गर्भवती अवस्था में। उसके गर्भ में बलराम जी थे, और इनके गर्भ में कौन आए? अनंत शेष के अवतार संकर्षण भगवान, यानी बलराम जी का ऐश्वर्य स्वरूप। तो योग माया ने इस गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी है उसमें उनको विलीन कर दिया। इसका मतलब ऐश्वर्य संपन्न बलराम जी, ऐश्वर्य वाले बलराम जी, अनंत शेष के अवतार, माधुर्य वाले बलराम जो रोहिणी पुत्र हैं, रोहिणी नंदन है, उसमें विलीन हो गए। ये आचार्य लोग रहस्य समझाते हैं। और भी रहस्य समझाते हैं कि बलराम जी देवकी के गर्भ में कुछ समय के लिए क्यों आए, क्योंकि देवकी का गर्भ जो है वो हमारे हृदय की तरह है। उसमें पहले ये जो छह बालक है वो छह विकारों की तरह है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये छह विकार पहले हृदय में होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने के बाद ही हमारा हृदय भगवान के आने के लिए थोड़ा सा योग्य हो जाता है। फिर बलराम जी आते हैं जो आदि गुरु हैं, वो उस हृदय को अपने उपस्थिति से परम शुद्ध कर देते हैं। और गुरु की कृपा से जब ये छह विकार और हृदय परम शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो हृदय भगवान के आविर्भाव के लिए, भगवान की अनुभूति के लिए योग्य हो जाता है। इसलिए बलराम जी उस गर्भ में आए कुछ समय के लिए, और फिर रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थित हो गए। अभी आठवां गर्भ जो है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ, सब लोग मेरे साथ बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः, नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान का आविर्भाव हमारे जैसे नहीं होता है। एक नीला तेज आकाश से प्रकट हुआ, वो कैद खाने में वसुदेव के हृदय में जाके स्थित हुआ। वसुदेव अचानक अति सुंदर, अति क्या कहते हैं, दिमागदार बन गए। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। कुछ समय बाद वसुदेव के हृदय में निवास करके, आप थोड़ा सा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, आकाश से दिव्य तेज, नीला तेज आ रहा है, वसुदेव के हृदय में स्थित हो रहा है, वो सुंदर बन रहे हैं, उनका प्रकाश कैद खाने में फैल रहा है। उसके बाद वही तेज वसुदेव के हृदय से निकलकर देवकी के हृदय में स्थित हो रहा है। अचानक देवकी परम सुंदरी बन जाती है। वैसे ही वो सुंदरी थी भी, लेकिन दिव्य तेज भगवान के तेज को अपने हृदय में ग्रहण करने के बाद में प्रकट हो जाता है। फिर वही दिव्य तेज कुछ समय देवकी के हृदय में निवास करके फिर उसके गर्भ में प्रवेश करके वहां स्थित हो जाता है, और देवकी गर्भवती हो जाती है। अभी मुझे जरूरी है इस समय, इसी समय आपको यशोदा माता कैसे गर्भवती हुई वो बताना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बहुत रहस्य की बातें हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वृंदावन वाले, वो चिरंतन यशोदा कृष्ण है, यशोदा नंदन है। और देवकी नंदन कृष्ण जो है वो वैकुंठवासी ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण है। तो इसमें अंतर है, क्योंकि देवकी मथुरा में है, ऐश्वर्य वाले स्थान पर है वसुदेव देवकी। तो वहां पर ऐश्वर्य वाले ही बलराम जी प्रकट हो गए, संकर्षण भगवान, और वहां पर ऐश्वर्य वाले ही कृष्ण देवकी नंदन प्रकट हो गए, वैकुंठवासी कृष्ण, ऐश्वर्य संपन्न। तो यहां पर अभी आप चलिए, अभी हम कहां जा रहे हैं? मथुरा के जेल से कहां जा रहे हैं? अभी हम नंदगांव जा रहे हैं। नंदगांव में नंद भगवान, नंद महाराज, यशोदा रानी का विवाह हो गया है। और इनका विवाह किसने प्रपोज किया था? यशोदा रानी मेहरानो गांव से हैं, जो नंदगांव से आज भी 6 किलोमीटर अंतर कोसी के रास्ते पर राइट साइड में है। तो ये यशोदा माता जी थे, उनको दो भाई और एक बहन थी, ये दो भाई और एक बहन, यशोधर यशवंत और यशोदा, और नाम यशोदा क्यों था उनका, सबको सदैव यश देने वाली यशोदा। तो वृषभानु महाराज जो सूर्यदेव के अवतार थे, सूर्य वंश में थे, वो नंद महाराज के बहुत प्रिय मित्र थे। तो वृषभानु महाराज ने यशोदा का रिश्ता नंद के लिए प्रस्तुत किया और यथावकाश बड़े धूमधाम से नंद महाराज का विवाह यशोदा से हुआ। लेकिन जन्म होने के बाद में, सॉरी, विवाह होने के बाद में बहुत साल बीत गए, इनको कोई संतान ही नहीं, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। नंद महाराज कैसे 85 साल के बूढ़े हो गए, यशोदा भी वैसे ही बुजुर्ग हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही है। रोज नंद महाराज ना, उधर एक नंद सरोवर है जो अभी आज के तारीख में पावन सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है, वो उनका खुद का सरोवर है, बहुत सरोवर है उनके, लेकिन बहुत ये खुद का सरोवर है विशेष, जहां पर रोज वो स्नान किया करते थे, भोर के समय उठकर जाते थे। तो एक दिन उनको थोड़ी देर हो गई, भोर का समय टलकर थोड़ा सा दिन, जैसे ना क्या कहते हैं ना, झुंझु मुंजू कहते हैं मराठी में, मतलब अभी सूरज नहीं आया लेकिन थोड़ा सा उजाला आ रहा है, उतना समय हो जाता है। नंद भगवान, नंद महाराज अपने घर से निकलते हैं, तो उस समय तक साधु भी अपना प्रातः विधि कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रभाती, एक ब्रज में बहुत सुंदर शब्द है प्रभाती। प्रभाती का मतलब क्या है, दातुन करना, कुल्ला करना, मुंह धोना, स्नान करना, उसको प्रभाती कहते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स। तो सब साधु अपने अपने कुटिया के बाहर प्रभाती कर रहे हैं और नंद महाराज अपने सरोवर की ओर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दंडोत महाराज, दंडोत, नंद महाराज सबको दंडवत करते जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं, और एक साथ उसमें क्या पता नहीं प्रेरणा हो गई, सभी साधुओं ने जो प्रभाती कर रहे थे एक साथ अपने मुख से आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, जय हो। तो नंद महाराज को जब सभी साधुओं ने एक साथ एक मुख से एक वाक्यता से पुत्रवान भव ऐसा आशीर्वाद दिया, नंद महाराज हंस पड़े। नंद महाराज बोले, ये भी कोई पुत्र होने की उम्र है, साधुओं को भी आश्चर्य हुआ, हमने सबने एक साथ मिलकर कैसा आशीर्वाद दिया। और उधर अभी बात क्या कहते हैं, अभी बात अभी कंफ्यूजिंग है, अभी क्या करें, ऐसा आशीर्वाद, अभी कोई बुढ़ी 80 ईयर्स की औरत को साधु ने बोला अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, तो वो क्या सोचेगी, अभी क्या होगा। तो साधुओं को भी आश्चर्य हुआ कि हमने ऐसा कैसे आशीर्वाद दिया, लेकिन बात बनाने के लिए बोला कि नहीं, हम जो बोलते हैं वो सत्य होता है, आप चिंता मत करना। हंसते हंसते नंद महाराज चले गए। साधुओं को बाद में बहुत टेंशन आया, उन्होंने कहा कि कहीं हमारा अगर शब्द सत्य नहीं हुआ तो लोग हमारे आशीर्वाद पर विश्वास विश्वास कैसे करेंगे। तो सब लोग चिंतित होकर शांडिल्य मुनि के पास में गए। शांडिल्य मुनि नंदगांव के बहुत बड़े संत हैं। शांडिल्य मुनि ने ही शाप दिया था कि यहाँ पर कोई कंस का आदमी आएगा तो वो पत्थर बन जाएगा। शांडिल्य मुनि का नंदगांव में बहुत बड़ा प्रस्थ है। तो ये सब साधु जो है ना, वो शांडिल्य मुनि के पास में गए, महाराज हमने अभी सुबह सुबह उनको एक आशीर्वाद दे दिया, अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि जैसे आपके श्रीमुख से ये एक वाक्यता के रूप में आशीर्वाद आशीर्वचन प्रकट हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान को आना है। आप लोग 18 करोड़ गोपाल मंत्र से उच्चारण करते हुए यज्ञ कीजिए, इस यज्ञ के संपन्न होते ही भगवान अपने दिव्य तरीके से प्रकट हो जाएंगे। तो साधुओं ने सब मिलकर तुरंत जल्दी जल्दी में गोपाल सहस गोपाल यज्ञ करना शुरू किया, 18 करोड़ आहुति वाला। तो बड़े प्रेम से साधुओं ने नंदगांव में बैठकर ये गोपाल यज्ञ में 18 करोड़ की आहुति अर्पण की, और जैसे ही पूर्णाहुति हुई, आखिरी आहुति के बाद में पूर्णाहुति हुई, सबके सामने आकाश से एक दिव्य नीला तेज आया और वो नीचे आकर यज्ञ के सामने प्रस्तुत हो गया। सब साधुओं की उपस्थिति में, शांडिल्य मुनि की उपस्थिति में वो नंद महाराज के हृदय में प्रवेश किया उसने, और वही तेज फिर यशोदा के हृदय में प्रवेश किया, और फिर वो तेज जाकर यशोदा के गर्भ में स्थापन हो गया। उस दिन कौन सी तिथि थी याद है किसको मालूम है, वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा थी, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे उत्सव है, एक उत्सव है कार्तिक पूर्णिमा में कृष्ण की गर्भ धारणा हुई थी, यशोदा के गर्भ में, यशोदा कृष्ण के यशोदा नंदन का गर्भ धारणा हुई थी। और आप गिनिए कार्तिक पूर्णिमा के बाद में गोकुलाष्टमी तक कितने दिन होते हैं, बराबर 9 महीने होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा से गोकुलाष्टमी, तो यहां पर गर्भधारण हुई, यशोदा गर्भवती हुई, वहां पर आठवें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए, है ना। उसके बाद में जितने दिन गर्भवती रही पूरा कारागृह प्रकाशित रहा, सारे देवता का एक एक करके करे ग्रुप्स में बड़े बड़ी संख्या में आकर बार 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 देवकी को वंदन कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं देवकी को। कभी लग रहा है भास हो रहा है, कभी लग रहा है प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, कभी लग रहा है भास हो रहा है, लेकिन सारा कारागृह था ना वो देवताओं का एक निवास स्थान हो गया एक तरह से। चिरंतन रूप में सारे प्रकार के देवता, सारे प्रकार के भगवान के अवतार, सारे प्रकार के भगवान के भक्त जो है आकर प्रार्थना कर रहे हैं। कंस का भय वहां पर बढ़ गया क्योंकि उन्होंने गिनती तो किया था ना, छह को मैंने मारा, एक गर्भपात हो गया, यही है वो आठवां गर्भ। तो ऐसे कहते हैं कंस इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि ऐसा पर्दा है ना, अभी हवा चल रही है, पर्दा उड़ रहा है, तो वो पर्दा जब हिल रहा है तो उसको लग रहा है कि अरे मेरा कहीं काल तो नहीं आ गया। ऐसे रात रात में उठकर वो पसीना होकर उठता था और सेवक कहता था महाराज क्या हो गया, वहां पर है। तो पर्दा खुल के दिखाता था, कोई नहीं महाराज, वहां पर कोई नहीं, आप आराम से बैठिए। तब तक ये पसीना पसीना हो गए तो वो पानी देके देते हैं, महाराज आप जलपान कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। तो जल का ग्लास देते हैं तो वो जल पीने को जाते हैं तो वापस उसको अपने काल का दर्शन होता है, तो पानी फेंक देता है, अरे महाराज क्या हो गया, पानी सब फैल गया जमीन पर, महाराज क्या हो गया, वो जल में भी है, वो पर्दे के पीछे भी है, सब जगह समाया हुआ है, पता नहीं कब आके मुझे मारेगा। सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन ये प्रतिकूल चिंतन है भगवान का, शत्रु के रूप में किया हुआ चिंतन है, लेकिन फिर भी उद्धार होता है। इस प्रकार से परम भयभीत होकर कंस ने अपना समय बिताया, वो दिन गिन रहा था कभी गर्भवती ये प्रसूत हो गई और कब मैं उसको मारूंगा। लेकिन एक बात विशिष्ट ध्यान रखने की आवश्यकता है, कंस ने अपनी बहन का गर्भपात कराने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उसको उतना ज्ञान था कि गर्भवती माता का गर्भपात करना ये बहुत भयंकर पाप है। आज की माताएं तो दिन दहाड़े गर्भपात कर लेती हैं, लेकिन राक्षस मति वाले भयंकर पापी पाप का घड़ा भरे व्यक्ति को भी ये ज्ञान था कि गर्भपात नहीं करना चाहिए। तो फिर यथावकाश क्या होता है, यथावकाश वो तिथि आती है। आपको शायद ये पता होगा कि ब्रज में महीनों की गिनती थोड़ी हमारे से अलग होती है, ब्रज में महीने पूर्णिमा से पूर्णिमा गिनते हैं और ब्रज के बाहर प्रतिपदा से प्रतिपदा अमावस्या तक महीने की गिनती होती है। तो जब हमारा श्रावण पूर्णिमा होती है तो उनका भाद्रपद शुरू हो जाता है और हमारा भाद्रपद शुरू होता है श्रावण की अमावस्या होने के बाद में भाद्रपद शुरू होता है। तो इसलिए शास्त्र में अलग अलग प्रकार के वर्णन दिए हैं कि जब भाद्रपद शुद्ध अष्टमी का समय आया और श्रावण वद्य अष्टमी का समय आया, तो एक जगह लिखा है कि वो पूर्णिमा से अस्त होने वाले जो सूर्य है वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ। दोनों एक ही है, कैलकुलेशन खाली अलग अलग सिस्टम में है, दिन एक ही है। वो कौन सा दिन है, अगर आप प्रतिपदा से अमावस्या तक महीना गिनते हैं तो वो वद्य पक्ष की अष्टमी है और अगर आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महीना गिनते हैं तो वो भी वद्य पक्षी है लेकिन उनका शुद्ध पक्ष हो जाता है। तो उस महीने में भाद्रपद की शुद्ध अष्टमी में या श्रावण की वद्य अष्टमी के दिन बीच रात में 12 बजे के समय पर भगवान का आविर्भाव हुआ। तो वो मुझे जरा नहीं मिल रहा यहाँ पर अभी, वो बहुत सुंदर वर्णन है उसका, एक मिनट में निकालते हैं, डोंट वरी। भगवान का जन्म का तिथि जानना बहुत जरूरी है, श्रावण मास वद्य पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र आयुष्मान आयुष्मान मुहूर्त हर्षण योग वृष लग्न अर्धरात्रि चंद्रोदय का काल। इस समय पर क्या क्या हुआ प्रकृति में उसका सुंदर वर्णन यहां पर दिया गया है। वो यह है कि भगवान चंद्रवंश में जन्म लेने वाले थे क्योंकि वसुदेव चंद्रवंश की वंश के हैं, ययाति यदु और शूरसेन और वसुदेव ये चंद्रवंशी हैं। तो चंद्र क्या सोच रहे हैं कि आज मैं अष्टमी अवस्था में हूं, सबको अष्टमी रूप में दर्शन दे रहा हूं। वास्तविक मुझे बताइए आप कि चंद्र का जो दर्शन है वो पूर्ण होता है कि कम कम आधा ज्यादा होता है, बताइए। चंद्र हमेशा पूरा ही होता है, चंद्र कभी आधा नहीं होता है, यहाँ के माया के वजह से वो प्रतिपदा द्वितीया तृतीया का दर्शन होता है, लेकिन वो हमेशा पूर्ण ही रहता है। ऐसे महाराज ने कल के प्रवचन में बताया था कि मून इज ऑलवेज फुल ओनली, इट अपियर्स एज प्रतिपदा द्वितीया तृतीया वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो आधा मैं दिख रहा हूं, चंद्र सोच रहे हैं, मैं आज आधा दिख रहा हूं अष्टमी का, और मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं, तो मैं आधा दर्शन क्यों दूं? इसलिए पूरे सृष्टि के निर्माण के समय से लेकर आज तक के समय में केवल एक बार ही अष्टमी का चंद्र जो है वो अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्र हो गया भगवान का स्वागत करने के लिए। फिर क्या हुआ, शतदल और सहस्त्रदल कमल खिल गए बीच रात में। बीच रात में कमल खिलते हैं क्या? कभी कभी खिलते कमल, सूर्य आने के बाद में खिलते हैं, सूर्य को देखकर खिलते हैं, सूर्य की ओर ऐसे 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 घूमते जाते हैं वो, और सूर्य अस्त होते ही फिर बंद हो जाते हैं। तो ये कमल रात को क्यों खिल गए? इसके कई कारण आचार्य बताते हैं। एक कारण ये है कि जब आधा चंद्र पूर्ण चंद्र हो गया तो उनको लगा कि सूर्य ही आ गया, दिन आ गया, तो वो खिल गए। दूसरा कारण ये है कि उनकी जो मालकिन है, जिसका नाम क्या है, कमलिनी लक्ष्मी देवी, जो कमल में विराजमान रहती है, उसका नाम कमलिनी है ना, हाथ में भी कमल धारण करती है। तो जब भगवान ने अपने माता के गर्भ में प्रवेश किया, देवकी के माता गर्भ में, तब लक्ष्मी जी को आह्वान किया, बोलो आप क्या कर रही हो, चलो जाओ नंदगांव में, वो वहां से नंदगांव गोकुल जाने वाला हूँ, सॉरी गोकुल जाने वाला हूँ, वहां जाकर आपको पूरा अपना ऐश्वर्य फैला देना है सब जगह पर, और बड़े धूमधाम से मेरे जन्मदिन को मनाना है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ। तो आह्वान किया और उनको भेज दिया, तो लक्ष्मी देवी मथुरा से जमुना के माध्यम से गोकुल में प्रवेश करने जा रही है। तो अपनी मालकिन स्वामिनी आ रही है, वो देखकर सारे कमल खिल गए उनके स्वागत में। और तीसरा कारण यह है कि आने वाले जो भगवान है उनको हमारे नाम से गौरव किया जाएगा, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, हस्त कमल, हमारे नाम से उनका गौरव किया जाएगा, यानी हमारा ही गौरव होगा उनके नाम, उनके अवयव के कारण हमारा गौरव किया जाएगा। इसलिए आनंदित होकर सारे कमल दल जो है, शस्त्र दल, सहस्त्र दल, सब प्रकट हो गए और विकसित हो गए। फिर पृथ्वी जो है ना, ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी जैसे कोई पत्नी अपने पति को बहुत दिनों बाद मिलने वाली है, तो उसकी कैसी अवस्था होगी, उस भावना में पृथ्वी आ गई। या और आचार्य दूसरी जगह वर्णन करते हैं कि नवपरिणीत बहु अपने होने वाले पति के साथ विवाह करने के लिए जब उद्युक्त तो हो जाती है तो कैसे वो आरक्त हो जाती है, वैसे पृथ्वी जो है वो आरक्त हो गई। इसलिए पृथ्वी के अंदर बहुत बहुत सुंदर सुंदर परिणाम दिखाए देखे गए हैं। वो ये है कि सारे जितने पृथ्वी पर वृंदावन धाम में जितने पेड़ थे वो सभी फलों से लद गए, जितनी लता पताएं थी वो सब फूलों से लद गई। कभी रात को फूल खिलते हैं क्या? नहीं, लेकिन भगवान के आगमन के लिए सारे फल और फूल जो है वो रात को ही प्रकट हो गए। सब पेड़ जो के शाखाएं जो है वो झुक गई जमीन की ओर अपने फलों से, भगवान को प्रणाम करने के लिए और भगवान को फल अर्पण करने के लिए, क्योंकि जानते थे कि भगवान यहां से निकलने वाले हैं। दश दिशाएं शुद्ध हो गई, आकाश शुद्ध हो गया, पृथ्वी रोमांचित हो गई, सब जगह पर धन धान्य से भरपूर हो गई वो। अग्निदेव दक्षिणावर्ती हो गए, दक्षिणावर्ती मतलब क्या, दक्षिण दिशा में जब अग्नि आता है तो यज्ञ आरंभ होता है। कंस का ऐसा ऑर्डर था कि कोई भगवान के नाम का अनुष्ठान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, सब यज्ञ आजन सब बंद, कोई भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेगा, कोई श्लोक पठन नहीं करेगा, कोई उच्चारण नहीं करेगा। तो सब लोग, साधु लोग जो भयभीत हुआ करते थे उस समय, भयभीत होकर कुंठित होकर अपना जीवन बिता रहे थे। अचानक बीच रात में भयभीत साधुओं का हृदय भय मुक्त हो गया, पता नहीं क्यों, उनको समझा नहीं क्यों हुआ, बीच रात में भयमुक्त हृदय हो गया, उनके मुख से उत्स्फूर्त रूप से श्लोक उच्चारण होने लगे, और तुरंत उनके यज्ञ कुंड में दक्षिणावर्ती अग्नि प्रकट हो गया, और रात को ही वो स्वाहा करके अग्नि कर यज्ञ करना शुरू कर दिए। उनको खुद को आश्चर्य हुआ कि हमारे हाथ से क्यों रहे, लेकिन एक ऐसा क्या कहते हैं, अज्ञात शक्ति उनको प्रवृत्त कर रही थी, भगवान की शक्ति, और बीच रात में श्लोकों का उच्चारण शुरू हुआ। आकाश में विद्याधर किंकर यक्ष किम पुरुष गंधर्व सब नृत्य गायन और वाद्य बजाने लगे, उनकी स्त्रियां जो है नृत्य करने लगी आकाश में बीच रात में आकर, और मधुमालती और क्या सौगंधिका, ऐसे अलग अलग प्रकार के सुंदर मालती, सुंदर सुंदर फूलों की भगवान की मथुरा के ऊपर देवताएं वर्षा करने लगी। ऐसे कहते हैं कि ऋषि मुनि, देव ऋषि, देवता और देवताओं की पत्नियां सब हवाई जहाजों में बैठ बैठ कर भर भर कर आकर मथुरा में पुष्प वृष्टि कर रहे थे, वापस जाकर खाली होने के बाद वापस भरकर आकर वापस पुष्टि कर रहे थे। ऐसे आकाश में विमानों का समुदाय इकट्ठा हुआ था, उसमें अनंत पुष्प की पुष्टि हो रही थी। सारे तारे आकाश में भरकर आए और चमचमाने लगे भगवान के आगमन के स्वागत के लिए। एक विशेष बात कल मुझे ध्यान में आया जब मैं कविकर्मा कर्णापुर के द्वारा दिया गया वंदन वर्णन पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि देवद्रोही भगवत द्रोही जितने दैत्य थे वो अचानक उनके बाल सफेद हो गए, केश सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, शरीर में चेहरे पे झुर्रियां आने लगी, मतलब जरा जरा जनित चिन्ह उत्पन्न हो गए, बुढ़ापे के लक्षण पैदा हो गए। मतलब क्या, मृत्यु निकट आ गई उनकी, अभी मृत्यु होने वाली है तो उनका शरीर में बुढ़ापे के लक्षण निर्माण हो गए। और साथ में देवताओं के ऐसे सुंदर एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूं। कौ पृथिव्याम लंब मानानी जातानी, ये होता ना लंबमान, मतलब क्या, पेंडुलम, पता है आपको, जो लटकता है एक तरह से दूसरी तरफ तक। तो कहते हैं देवता ऐसे आकाश से पृथ्वी पर लटके हुए अवस्था में, आतुर अवस्था में खड़े थे भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कभी निकलेंगे वहां से और पब्लिक में, मतलब खुले आसमान में आएंगे, खुले वातावरण में आएंगे, तो सब लोग वहां पर वेट कर रहे हैं। देवता, देवताओं की पत्नियां, देव ऋषि, सब लोग आकाश में, और देवता खास करके लंबा लंबा माना ना जाता मी इस रूप में खड़े हैं। और एक विशेष बात कल ध्यान में आई, वो है कि जो पाप भार से पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी, वो पाप भार अचानक नष्ट होते हुए पृथ्वी का अनुभव हुआ। अभी तो भगवान आना बाकी है, आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, और आप सोचते हैं कि उसके बाद में पाप भार का जो बोझ भावना है वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी को उसी समय पर पाप भार नष्ट होने की भावनाओं का अनुभव हुआ, यानी कि हल्का हल्का लगने लगा। सब प्राणी मात्र जो दुखी थे वो दुख मुक्त हो गए, और सारे सामान्य जन मात्र जो है वो मंगल रूप तारुण्य का अनुभव करने लगे। ये एक विशेष बात है, राक्षसगण वार्धक्य बुढ़ापे का, जरा जनित चिन्हों का अनुभव करने लगे, और जो भगवान के लिए अनुकूल भक्त थे, अनुकूल जीव थे, सामान्य जन थे, वो तारुण्य का मंगल रूप अनुभव करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नदी समुद्र कुंडों के जल स्वच्छ हो गए, भूमंडल में प्रसन्नता स्थापित हो गई, वायुदेव जो है, वायुदेव मंद शीतल और सुगंधित होकर बहने लगे, क्योंकि सारे कमल खिल गए, सारे फूल खिल गए, सारे फूल आकाश से वृष्टि हो रही है, तो सबके पुकर पू केसर वातावरण में छा गए हैं, तो आकाश में बादल इकट्ठा हो गए और मंद मंद गड़गड़ाहट कर, गड़गड़ाहट के साथ में शीतल शीतल मंद मंद बूंदें गिरने लगी, यानी कि नमी भी पैदा हो गई। आकाश के बादल भी भगवान के आने के लिए एक सुंदर सॉफ्ट म्यूजिक पैदा कर रहे हैं, जल के बिंदु गिर रहे हैं, हवा उसमें से बहने लगी, जल के बिंदुओं की नमी नमी, सुगंधी पुष्पों के पुकेसर, और अपना स्पीड को मंद मंद करते हुए बहने लगी और सबको आह्लाद देने लगी। उसके बाद क्या हुआ, पर्वत वृक्ष गौ ब्राह्मण देवता सब संपत्ति से समृद्ध हो गए। हाँ, कहते हैं गरीब राम धनी राम आए गो। उस समय देवताओं के आकाश में धुंधुबिया भेरी और वाद्य बजने लगे, सब जगह जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पारिजात मंदार मालती के फूलों की वर्षा हुई, वेदों के ऋचाओं का गायन शुरू हो गया, विद्याधर चारण गंधर्व सिंध किन्नर गीत गाने लगे, नाचने लगे और वाद्य बजाने लगे। उस समय अचानक वसुदेव और देवकी की श्रृंखलाएं कट गई और उनके आंखों के सामने, एक विशेष बात है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में बीच मध्य रात्रि के काल में, चंद्रोदय काल में भगवान का जन्म हुआ और भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए भगवान? पूर्ण अवतार से प्रकट हुए वसुदेव के सामने, कमल नयन, उनके मुख पर पत्रावली की रचना की गई थी। पत्रावली जानते हैं आप लोग डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट वृंदावन बिहारी के मुख में वो बनाते हैं ना कलरफुल, उसको पत्रावली कहते हैं। ललिता देवी उस कला में बहुत निपुण है, पत्रावली की रचना में, तो पूर्ण पचन पत्रावली की रचना मुख पर धारण किए भगवान प्रकट हुए हैं। शंख चक्र पद्म गदा चार भुजा धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं। उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके और कौस्तुभ मणि भी उनके छाती पर विराजमान है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं जिनका प्रकाश अनंत सूर्य की तरह प्रकाशित है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्युल लता के समान चमत्कार, पूरे जल से भरे हुए घन के प्रकाश, घन के तरह रंग धारण करके भगवान आए हैं। वैद्रीय मणियों से भरा हुआ मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है। उनके बाजुओं पर, उनके कलाई पर, उनके कमर पर, उनके पैर में कांतिमान अद्भुत कंकण, सूर्य के समान तेजस्वी कुंडल विराजमान है और मकर कुंडल ऐसे हिल रहे हैं। उनका प्रकाश, उनके नीले गालों पर सुनहरा प्रकाश पड़ रहा है और एक अद्भुत आभा निर्माण हो रही है। और मधु लोलोप यानी मधु के लिए लोलोप इच्छुक जो भ्रमर है वो उनके माला के ऊपर गुंजायमान होकर बड़ा सुंदर ध्वनि करके हुए वहां पर गुंजन कर रहे हैं। और उनके सुंदर शीश पर सुंदर घुंघराले केश जो है उनके क्या कहते हैं शोल्डर को क्या कहते हैं हिंदी, कंधे तक ऐसे फैले हुए हैं। ऐसा सुंदर दिव्य अवर्णनीय, हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं उसका, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अवर्णनीय सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य लेकर भगवान देवकी और वसुदेव के कारागृह में प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश सब जगह फैल गया और देवकी वसुदेव हाथ जोड़ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। दोनों ने मिलकर दिल भर के वंदना की भगवान की, लेकिन फिर भी देवकी के मन में अभी भी भय था। कहते हैं वसुदेव भगवान को देखकर तुरंत कंस के भय से, आने वाले भय से मुक्त हो गए, लेकिन देवकी के मन में अभी भी वात्सल्य के कारण भय था। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि देवकी का वात्सल्य का स्तर जो है वो देवकी वसुदेव से भी ऊपर है। वसुदेव भी बहुत महान वात्सल्य भक्त है भगवान के, लेकिन देवकी का वात्सल्य वसुदेव से भी ऊपर है। उसके ऊपर नंद महाराज का वात्सल्य है, उसके ऊपर नंबर वन जो है वात्सल्य में यशोदा देवी है। यशोदा देवी नंबर वन, उसके बाद नंद महाराज नंबर टू पे नहीं आते हैं। उसके बाद में जो गोकुल की और नंदगांव की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो नंद बाबा यशोदा जैसे ही भाव रखा करती थी, वो नंबर टू पे हैं। और नंबर थ्री पे नंद महाराज है, और उसके बाद में देवकी है, और उसके बाद में वसुदेव है, उसके बाद में कुंती है, और बीच में रोहिणी भी आती है। यशोदा के बाद में रोहिणी, फिर और स्त्रियाएँ, फिर नंद महाराज, फिर देवकी, फिर वसुदेव, फिर कुंती और आदि बाकी के लोग। तो फिर वसुदेव ने भगवान का जन्म होते ही क्या किया, अपने मन में 200,000 गायों को साल अंकृत यानी अलंकार पहनकर उनको मन में ही ब्राह्मणों को दान कर दिया। ये नहीं बताया क्या करूं मैं जेल में हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दान दूं आपको। आज भी ये मन में करने की भगवत सेवा की प्रथा प्रचलित है। जो लोग गरीब हैं वो सोचते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी अपने मन में भगवान को पंच पकवान 56 भोग सोने की थाली में रत्नों से भरे हुए वाटियों में अर्पण कर सकते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कलयुग में अपने मन के द्वारा की गई सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान साथ साथ में मन से किए गए पाप को स्वीकार नहीं करते, पाप को गिनती में रखते नहीं है। ये भगवान की कलयुग के लिए विशेष कृपा है। कलयुग में मन में किए गए विचारपूर्वक विचार में किए हुए पाप जो है उसका फल नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में फिर भी मन में किए हुए सेवाओं का भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए हम कितने भी गरीब होंगे तो अपने मन में भगवान के उत्सव के दिन अनंत भोग लगा सकते हैं, अनंत थालियों में सोने के और अलंकार के थाली में आप भोग लगा सकते हैं। तो वसुदेव ने अपने वैष्णव तरीके के अनुसार मन से अलंकारों से लदे हुए 200,000 गायों का ब्राह्मणों को दान दिया, भय मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान का वंदन किया, फिर देवकी ने वंदन किया, फिर भगवान ने देवकी को सांत्वना देने के लिए बताया कि हे वसुदेव और देवकी, आप पुराने जमन के द्रोण और धरा हो, आपने 12,000 साल केवल पेड़ से पड़े हुए पत्तों को ग्रहण करके व्रत किया था, उसके फल स्वरूप मैंने आपको दर्शन दिया था, तो आपने कहा था कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, तो उस वरदान, उस दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए जब आप प्रश्नी के रूप में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आए थे, तब मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद में आप दोनों कश्यप और अदिति बनकर आए थे, उस समय मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई के रूप में वामन देव के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हुआ था, अभी वही मैं, आज आप द्रोण धरा वसुदेव और देव के रूप में सामने मेरे am I right प्रभु जी, धरा एंड द्रोण होने ना, नंद महाराज कौन थे, नंद महाराज द्रोण धरा थे और ये सुतपा और पृष्णी थे, सॉरी। आज आप वसुदेव देवकी के रूप में सामने खड़े हो और वही मैं परम शक्तिशाली परम भगवान श्री कृष्ण आपके गर्भ में आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं, इसलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं है, यथावकाश में कंस का वध करूंगा और सारे समस्त ब्रज ब्रज भूमि का और ब्रज और ब्रह्मांड का भय नाश कर दूंगा। तो वसुदेव देवकी ये बात सुन रहे हैं और देवकी फिर भी बोल रही है कि नहीं नहीं भगवान, आपको देखकर ये कंस जागृत हो जाएगा और फिर आपको हमला करेगा और आपको क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए आप कृपा करके दो भुजा वाले बालक के रूप में आ जाओ। तो माता के वात्सल्य को प्रतिसाद देते हुए चार भुजा वाले पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न दर्शन देने वाले भगवान जो है वो दो भुजा के रूप में प्रकट हो गए। इस दो भुजा वाले बालक के रूप में प्रकट होने के पहले भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया कि जब मैं बालक रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो मुझे टोकरी में डालकर यमुना पार करके नंद महाराज के घर में यशोदा माता जी के गोद में छोड़ के आना। वहां पर भी बालक एक कन्या हुई है, उस कन्या को लेकर वापस चले आना, ऐसा वो आदेश देते हैं। और तत्क्षण उनके सामने दो भुजा वाले छोटे से बालक बनकर रोने लगते हैं। तो कवि कर्णापुर समझाते हैं कि भगवान जैसे ही बालक बने तो कहते हैं समरसता पूर्णता से भगवान रोने लगे। ऐसे भगवान जोर जोर से रोए कि वो कंस तक उसकी आवाज सुनाई पड़ी। फिर क्या हुआ, कवि कर्णापुर समझाते हैं कि आने वाले मधुर रसमय लीलाओं का संपन्न करने वाला महोत्सव जो होने वाला है उसका प्रास्ताविक के रूप में भगवान ने रुदन किया और रुदन जो है वो इतना सुंदर और पवित्र था कि ओमकार, प्रत्यक्ष ओमकार, व्यक्ति रूप ओमकार जो है भगवान के कंठ में जाके स्थित हो गया और भगवान का रुदन जो है, रोना जो है, वो ओंकारमय प्रकार तरीके से पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गया। मानो भगवान आने वाले जो दिव्य लीलाओं को प्रकट करने वाले हैं उसका प्रास्ताविक दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मंगलाचरण गा रहे हैं, उसका शुरुआत का एक ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद में झट से देवकी ने उनको गर्भ में अपने क्या कहते हैं पल्लू में छुपाया और स्तनपान कराया और स्तनपान करके ही बड़े ही दर्द भरे हृदय से देवकी ने अपने बालक को अपने पति के पास दे दिया। और टोकरी में जैसे ही बालक ने अपना आसन ग्रहण किया तो सारे पहरेदार जो है योग निद्रा में प्रभावित होकर सो गए। जब बीच रात में वर्षा हो रही थी, बादलों के गड़गड़ हो रही थी, फिर घनघोर वर्षा शुरू हुई, उसके बाद उस समय सारे पहरेदार ऐसे सो गए मानो जो आंख में तेल डालकर क्षण क्षण के लिए देवकी वसुदेव का अवलोकन करते थे और कंस को रिपोर्ट दिया करते थे। वह ऐसे सो गए कि कोई भी चीज को जगा नहीं सकती। सारे दरवाजे के ताले खुल गए, श्रृंखलाएं गिर गई और एक एक दरवाजा पार करते हुए दिव्य प्रकाश में भगवान को अपने टोकरी में सर पे धारण करते हुए वसुदेव जी बाहर निकले। जो पूरे सातवें द्वार के बाहर निकले तो वो यमुना किनारे पहुंच गए। उस समय यमुना ऐसे उछाल उछाल कर बह रही थी, क्यों, क्योंकि वो भगवान के आदेश के अनुसार तब जब आदेश हुआ था तब से आकर ब्रज में विराजमान है, वो अपने भगवान का इंतजार कर रही है। वो भगवान अभी आ गए तो प्रफुल्लित होकर बड़ी बड़ी लहरों के साथ बाढ़ के रूप में वो प्रकट हो रही है। सुदेव ने देखा, बाप रे, इतना भयंकर वर्षा हो रही है और यमुना जी को बाढ़ आ रही है, सब जगह कमल खिले हुए हैं, प्रकाश खिला हुआ है, पूर्ण चंद्रमा खिली हुई है, लेकिन मैं जाऊं कैसे। फिर भी जाना तो है ही, जो भक्त को भगवान का या अपने गुरु का आदेश प्राप्त हुआ है वो आदेश इतना कठिन भी होगा तो भी उसको पूरा करना ही है, इसलिए न जानते हुए कैसे जाऊंगा, फिर भी वो जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, यमुना जी को बाढ़ आ रही है और सर पे लेकर भगवान को जा रहे हैं। जैसे ही वो सर पे उन्होंने भगवान को धारण किया, अनंत शेष अपने हजार फनों से उसमें छतरी के रूप में प्रकट हो गए। तो क्या कहते हैं, जैसे ही हम भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तुरंत बलराम जी अनंत शेष बनकर हमको छत्र छाया देते हैं। जैसे ही भगवान को हम भगवान के नाम के रूप में स्वीकार करते हैं वैसे ही तब से ही बलराम जी अनंत शेष का आश्रय हमको प्राप्त होता है, ये उसका आचार्य समझाते हैं। तो पीछे पूर्णता से अनंत शेष हजार फनों के साथ में आश्रय दे रहे हैं और उसके ऊपर भगवान, नीचे भगवान है, उसके सर पे धारण किए हुए वसुदेव चल रहे हैं। और जैसे ही वसुदेव अंदर घुसने लगे तो पहले एडियों की तरह पानी, फिर घुटने तक पानी, फिर कमर तक पानी, फिर नाभि तक पानी, फिर वक्षस्थल तक पानी, फिर गर्दन तक पानी, फिर नाक तक पानी, और डूबने लगे। अचानक भगवान ने अपने कटोरी टोकरी से अपने पैर बाहर निकाले और जमुना जी बढ़ती 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 गई और पैरों का स्पर्श किया। जैसे पैरों का स्पर्श किया, जमुना जी ने रास्ता दिया, बोलो जमुना मैया की। जमुना जी ऐसे पूरा सूखा रास्ता देने लगी। और एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि भगवान जमुना जी के जल के अंदर कूद गए टोकरी से उछाल कर, और से तो चिल्लाने लगे, अरे कोई लो, अरे जाला को ले लो, कोई लो लाला गिर गया गिर गया गिर गया, लो कोई लो कोई लो कोई लो। तो उस घाट का नाम पड़ा कोयलो घाट। और वो भगवान जमुना जी के जल में पूरी तरह से गिर गए, लेकिन जैसे ही गिर गए जमुना जी ने रास्ता दिया, फिर तुरंत वसुदेव ने उनको पकड़ा और फिर टोकरी में रखा। आप सोच सकते हैं यमुना जी कितनी भाग्यवान है और कितनी महान भक्त है भगवान की। जन्म लेने के कुछ ही क्षण के बाद में भगवान ने जमुना जी को अंग संग देकर अपना चरणामृत बना लिया। इतनी यमुना जी भाग्यवान है। और जमुना जी ने रास्ता दिया, सूखे जमीन पर चलते हुए जमुना जी का पात्र क्रॉस करते हुए वसुदेव जी गोकुल पहुंचे हैं। और उस समय क्या हुआ है, उस समय बीच रात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ ले सब लोग, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में कृष्ण भगवान का कंस के कारागृह में आविर्भाव हुआ, और रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में यशोदा देवी प्रसूत हो गई। और वो बीच रात का समय था और वहां पर भी वर्षा हो रही थी, वहां पर भी गड़गड़ाहट हो रही थी, बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी वहां पर भी। तो ये प्रसूति की वेदना से या थकान से ग्लानि आ गई उसको, और वो उसे निद्रिस्त हो गई, मतलब उसको समझाने की पुत्र हुआ है कि पुत्री हुए कि एक हुआ है कि दो हुआ है। तो आचार्य बताते हैं कि दो बच्चे जन्म लिए, एक है यशोदा नंदन जो मैंने बताया था कार्तिक पूर्णिमा के समय पर नंदगांव में यशोदा के घर में प्रवेश कर कर वहां पर स्थानापन्न हो गए थे। यशोदा उसी को अपने घर में धारण की हुई थी, वो यशोदा कृष्ण जो है वो जन्म लिए, और साथ साथ उनकी एक बहन योग माया देवी कन्या के रूप में जन्म लेकर ट्विंस जन्म हो गया उस समय। लेकिन उसको पता नहीं था, उस अंधकार में समय पर जब वसुदेव प्रवेश किए वहां पर, तो उन्होंने उस बालक को जैसे ही यशोदा के गोद में रखा, वो बालक यशोदा नंदन के अंदर विलीन हो गया और एक ही बालक बन गया। और फिर भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने उस कन्या को उठाया, फिर टोकरी में रखा और फिर वो चलते बने वापस गए। तभी भी यशोदा यमुना देवी ने रास्ता दिया और छत्र छाया में वो कारागृह में पहुंच गए। पहले दरवाजे में अंदर गए वो बंद हो गया, दूसरे में गए वो बंद हो गया, तीसरे में गए, चौथे में गए, पांचवें में गए, सातवें में गए, सात दरवाजे बंद हो गए। अंदर के कारागृह में प्रवेश किए, सारी श्रृंखलाएं वापस शरीर पे आ गई, सब लॉक लग गए अपने आप। और फिर वो कन्या रोई जोर से, जैसे कन्या रोई जब बालक रोया था तभी किसी को सुना नहीं पड़ा था। मैंने गलती से आपको बताया कि वो कंस तक पहुंची आवाज, लेकिन कंस को सुनाई नहीं पड़ा, केवल वसुदेव देवकी को सुनाई पड़ा था जब कृष्ण भगवान रोए थे। लेकिन जब कन्या रोई उसके आवाज से सब पहरेदार उठ गए और भाग के देखा तो हाँ उनके गोद में कन्या है, रो रही है। तो भाग के कंस को उन्होंने खबर दिया, कंस वहां पर डर के मारे उठ गया और भाग भाग के जेल में आ गया। और क्या देख रहा है, देख रहा तो कन्या हो गई। तो उसने ना भय मिश्रित हास्य किया, देखो देवता लोग भी अपनी वाणी को बदल लेते हैं, कैसे विश्वास करें उनकी वाणी पर। उसको तो लगा था कि पुत्र आएगा, लेकिन उन्होंने तो गर्भ कहा था, एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बताया था। सब नाटिकाओं में कहते हैं कि पुत्र होगा, आठवां पुत्र के द्वारा वध होगा, लेकिन आप भागवत पढ़िए उसमें गर्भ का वर्णन किया गया है। तो उस समय देवकी कहती है, अरे भैया अभी तुमको आठवें पुत्र से डर का भय था तो आप कन्या को क्यों मारते हो, वैसे भी आठवीं संतान से भी आपका डर है, तो ये तो कन्या है, कन्या को मारना नहीं चाहिए। मैं आपको वादा करती हूँ तुमको जो पुत्र होगा उसके बाद में मेरी कन्या का विवाह करा दूंगी। इसको हमारी भाषा में कहते हैं साट्या सोयरिक, मतलब भाई का पुत्र और बहन की कन्या का विवाह हो सकता है, और भाई की कन्या और बहन का पुत्र इसका विवाह हो सकता है, दिस इज बोनाफाइड। और कृष्ण का विवाह भी ऐसे ही हो गया है कई जगह पर। एनीवेज, तो देवकी यहाँ गिड़गिड़ा रही है कंस के सामने, हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, भैया आप भ्राता मुझे आप अभय दान दो, मेरी कन्या को अभय दान दो, ये कन्या का आपको क्या बिगाड़ेगी, ये तो अबला है, ये तो आपके आश्रय के योग्य है, आपके आपके प्रोटेक्शन सुरक्षा के योग्य है ये, आप उसको वध मत करो। फिर भी देवकी बालक मुझे दे दो, हमारे द्वारकाधीश प्रभु ने वो ड्रामा में कहा था, देवकी बालक मुझे दे दो, क्रूरता से द्वेष से युक्त भावना से कंस ने छीन लिया उस बालिका को अपने हाथ में, और उसी शिला पर वो उठाकर पैर के द्वारा उसको पटकने वाला था। उस समय वो बालिका उसके हाथ से फिसल गई और आकाश में जाकर अष्टभुजा वाली देवी बनी। उसने गर्जना की आकाश में, और आकाश में जब प्रकट हो गई आठ भुजा वाली देवी पूरे तेज के साथ, तो सारे देवताएं एकत्र होकर उनका पूजन भी करने लगे आकाश में। कंस देख रहा है भयभीत होकर, अरे बाप रे, ये तो दुर्गा देवी है, भवानी देवी है, पार्वती देवी है। अचानक उसका गर्भ गलित हो गया, मतलब एकदम गलित गात्र हो गया, और उस देवता ने वहां पर देवी ने ऐलान कर दिया, मूर्ख कंस, तूने देवकी वसुदेव की छह पुत्रों का वध कर दिया है, लेकिन तुम्हें मारने वाला काल कहीं और पैदा हो गया है, अब इनको यातना देना बंद करो। ऐसे भागवत में दिया है, लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि साथ साथ में वो ये भी कहती है कि इनकी जो अर्धांगिनी है, बहिरंग अंतरंगा शक्ति, वो भी जन्म लेगी और वो भी आपका विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस जो है पूरा एकदम गोगल गाय बन जाता है, बकरी बन जाता है, तुरंत अपने बहन के चरणों पर गिरता है, बोलता है बहन, भाई, बहनोई जी, भावजी, प्लीज माफ करना, क्या करूं, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा था मेरे हाथ से क्या हो रहा है, हाँ भगवान की जो त्रिगुणात्मक शक्ति है वही मुझसे कार्य करवा रही थी, मैं तो कठपुतली की तरह कार्य कर रहा था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ जानबूझ के ही सब कर नहीं रहा था, भगवान की वो जो दिव्य शक्ति है, विधाता की शक्ति जो है वो मुझसे कार्य कर रही थी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ये गलती किया, लेकिन आप जान लो कि मैं करता नहीं हूं, करता तो विधाता है, और आप बड़ी दयालु हो, मुझे आप माफ करना। अगर आप में से कोई माताजी उसमें देवकी के रूप में होती तो क्या करती उस समय, सोच लीजिए, आपके चरणों में कंस गिर रहा है, दिग्विजयी कंस, महापराक्रमी, महादुष्ट, जो आपके छह बालकों का निर्दयता से, घृणता, निर्घृणता से वध कर चुका है, वो अभी आपके चरणों में गिर रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक लात मारती उसको, हटो यहां से निर्लज भाई मेरा, तू छह पत्रों का वध करने के बाद अभी मुझे तत्व ज्ञान सिखा रहा है, दुष्ट, तू दंड के योग्य है, ऐसे कुछ डायलॉग मारते हम लोग। लेकिन देवती ने तुरंत उसको माफ कर दिया, तुरंत ही। कहते हैं हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लव मीन्स एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस, चिरंतन माफी करने का स्वभाव को ही प्रेम कहते हैं। और गुरु महाराज ऐसे भी बताते हैं कि वैष्णव जो है वो अपराध होने के पहले ही उसको माफ कर देता है, अपराध को स्वीकार ही नहीं करता है। अब इतना अपराध अगर कोई किसी का करेगा तो उसको माफी देना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। लेकिन देवकी अपने वैष्णव स्वभाव का यहां पर प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन भी नहीं कर रही है, स्वभावता ही प्रकट हो रहा है, वो माफ कर दिया उसने, बोले भैया कोई बात नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। तुरंत उसने देवकी वसुदेव को रिहा कर दिया और खुद भी जाके पश्चाताप करके, ऐसा हो मतलब ना एक तरह से भक्त बन गया वो, उस जगह पर कारागृह में वो देवी को प्रकट होते हुए देखते हुए वो तुरंत वैष्णव बन गया, वो पूरी भाषा पढ़ी उसका, आप डायलॉग पढ़िए उसके, एक वैष्णव का डायलॉग है पूरा, अभी इसके आगे मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, पूरा अच्छे अच्छे वादे करता है, पूरा वैष्णव तरीके से व्यवहार करता है, और एक वैष्णव बनकर ही घर जाकर सोता है, निश्चय करते हुए कि आगे मैं कुछ पाप नहीं करूंगा। अगले दिन उसी पश्चाताप की भावना से वैष्णव वाली भावना को लेकर दरबार में जाता है और सबको बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके जो साथीदार है ना, सो मंत्रीगण, जो इतने भी राक्षसगण है, बहुत सारे लोग, इसमें पुतना भी है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, सब लोग सभा में आते हैं, और बड़ी दर्द भरी कहानी पश्चाताप की भावना से आंखों से आंसू लेते हुए कंस उनको सुनाता है। राक्षस लोग क्या सुनते हैं, अरे महाराज आप चिंता क्यों करते हो, वो देवी ने ऐसे कहा था ना कि तुम्हारे तुमको मारने वाला काल जो है वो कहीं और प्रकट हो गया है, मतलब कुछ दिन का होगा ना वो, उतने से वहां से पुतना आती है, कहती है महाराज आप चिंता मत करो, मेरा आहार ही नवजात शिशुओं का खून है, नवजात बालकों का खून पीना ही मेरा आहार है, और मैं खिचड़ी हूं, मैं तिनके को अभिमंत्रित करके विमान बनाकर उसमें यात्रा कर सकती हूं, मैं आपको वादा करती हूं आप चिंता मत करना। बाकी राक्षस क्या बोलते हैं उसके पहले कि देखो ब्रह्मा तो अपने ध्यान में मग्न है, उनको समय नहीं है, उससे आपको कोई भय नहीं है, शिव जी की मैं आराधना करता हूं उससे भी कोई चिंता नहीं है, और विष्णु वो भागकर अपने भक्तों के हृदय में जाकर छुप गया है, डरना किसको है, बाकी बचे हुए देवता को हम लोग खत्म कर देंगे, आप कुछ चिंता करते हो। और रही बात उस बालक की, उतने में देवपुत्र आती है, कहते हैं कि मैं सबका वध कर दूंगी, मैं जा रही हूं अभी तुरंत, सुंदर स्त्री का रूप धारण करूंगी, मेरे स्तन में कालकूट विष भर दूंगी, और जितने भी 10 दिन के पहले जितने बालक हुए, कोई कहते 6 महीने पहले बालक, कोई कहते 3 महीने पहले, कोई बात नहीं, न्यू बॉर्न बेबीज जितने भी हुए हैं वो सबको मैं मेरा दूध पिला पिला कर मार दूंगी, उसमें वो भी तुम्हारा काल भी मर जाएगा। तो कंस पूरा जो है ना वो भी वैष्णव बन गया, तुरंत वापस राक्षस बन जाता है। देखिए संघ का परिणाम देखिए, पश्चाताप करने के बाद में भक्त बना हुआ व्यक्ति भी कुसंगति के वजह से दोबारा राक्षसी प्रवृत्ति का बन सकता है। कंस दोबारा राक्षस बन गया, उसके अंदर वो प्रेरणा दी गई, अरे आप चिंता क्यों करते हो, आपके काल को हम सब लोग मिलकर मारेंगे, इतने सारे लाइन लगी हुई है, सब आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए करने के लिए आतुर है, आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तत्पर है, आप कुछ चिंता करते हैं, इनमें से एक भी काफी है उसको मारने के लिए, आपको चिंता, आप आराम से बैठिए अपना राज का भोग कीजिए, निश्चिंत हो जाके रहिए, हम ये हमारा प्रोजेक्ट है उस बालक को खत्म करने का। तो कर्ण पूरा वापस आश्वस्त हो जाता है, भगवान का विद्वेष पुनः जागृत होता है, राक्षसी प्रवृत्ति पुनः जागृत हो जाती है। फिर आप जानते हैं आगे जाकर पुतना आती है वगैरह वगैरह। अभी हम लोग क्या करेंगे, नंदोत्सव का वर्णन करेंगे। अभी यहां पर क्या हुआ, कहते नंद महाराज की एक बहन थी, वो बहन जो थी उसको सुबह के समय भोर के समय एक स्वप्न आया कि मेरी जो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में भाई की पत्नी को, भाभी, मेरी जो भाभी है उसको पुत्र संतान प्राप्ति हो गई है, उस स्वप्न आता है, और बीच में सुबह उठकर वो भाग भाग कर नंद भवन आती है और जगाती है नंद बाबा को और अपने बहू को अपनी भाभी को, उठो 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 देखो तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तब जाकर यशोदा देवी जो है जग जाती है और देखती है उसके गोद में एक नील तेज बसा हुआ है, एक सुंदर बालक के रूप में जिसकी आभा जो है पूरे नंद भवन में फैली हुई है, उसके कोमल कोमल अंग है, उसके कमल जैसे नेत्र है, बहुत सुंदर सुंदर घुंघराले बाल है और उसके गोद में आराम से पहुड़ा हुआ है। तुरंत नंद बाबा को आते हैं वहां पर दर्शन करते बालक का, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। तब तक तो पूरे ब्रज में खबर फैल जाती है, ये हमारे सूरदास जी और बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने भजन लिखे हैं कि क्या क्या स्थिति हुई ब्रज में, जितने जितने गरीब ब्राह्मण थे उनके घर धन धान्य से भर गए, सब जगह आनंद ही आनंद फैल गया, संतों के हृदय में आनंद फैल गया, सब लोगों को अनुभूति हुई कि भगवान का आविर्भाव हुआ है, सब लोग वहां से भाग भाग कर सज धज कर अलंकार पहनते हुए नंद भवन की ओर बढ़ने लगे, सभी स्त्रियों ने अलंकार धारण किए, फूल धारण किए, मालती किए और सौगंधिका और अलग अलग पुष्प धारण किए, अपने केशों को सजाया, अपने सबसे सुंदर कीमती वस्त्र धारण किए और अपने सुपड़ा धारण लिया अपने पास, उसमें हल्दी मक्खन चंदन अगुरु और अलग अलग पवित्र वस्तुएं ले ली, सुपारी ले ली, पान ले लिए, अलग अलग पवित्र वस्तुओं का सब भंडार कर दिया अपने सूप में और भगवान को देने के लिए उपहार ले लिए और सब लेकर वो भागने लगे और देवताएं ऊपर से देख रहे, क्या देख रहे हैं, नंद भवन के नंद गांव के सारे रास्ते सुंदर सुंदर स्त्रियां और पुरुषों से भर गए हैं, जो सालंकृत रूप में सुंदर वस्त्र धारण करके हुए नंद गांव की ओर भाग रहे हैं और जितने भाग रहे हैं उनके सारे फूल जो है धीरे धीरे करके अपने सर से रास्ते पर गिर रहे हैं, सारे नंद भवन के रास्ते फूलों से भरे हुए हैं, ऊपर से देवता लोग पुष्प वृष्टि भी कर रहे हैं और सब लोग नंद बाबा के घर पे आते हैं। तो यशोदा देवी कहती है नहीं, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी, उसको नजर लगेगी, इसलिए किसी भी गोपियों को वो दर्शन नहीं करा रही है। तब गोपियां कहती है हम आपके लाला को नजर लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे पास सामान देखिए, नजर उतारने का सामान लेकर आए हैं। तो जब यशोदा देवी उनको देखती है कि उनके सुपड़े में नजर उतारने का सामान भर भर कर वो पवित्र सामान लेकर आई है, तब वो सोचती है कि मैं दूंगा, फिर भी वो सोचती नहीं दूंगी, तो अपने बाला को गोद में छुपा के रखती है। लेकिन लाला क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सब मेरे ब्रजवासी जन प्रेम से दर्शन करने आ रहे हैं, तो अपना पैर उसके गोद में से बाहर निकाल देते हैं। तो सब गोपियां और सब ग्वाल बाल जो हैं श्री कृष्ण भगवान के सुंदर तेजमयी चरण कमल का दर्शन करते हैं और सब जाकर चरण को स्पर्श भी करती हैं, और जब स्पर्श कर ही नहीं रही तब तक भगवान अपना शीश जो है उसके पल्लू से बाहर निकाल लेते हैं और अपने सुंदर मुख कमल का भी दर्शन करते हैं, और सब गोपियां तुरंत अपना सामान लेकर उसकी नजर उतारते हैं और मंत्र बोलकर उनका नजर उतार कर छोड़ना आरंभ करते हैं। यशोदा देवी प्रसन्न हो जाती है कि रे हमारी इच्छा तो दिखाने की नहीं थी, भगवान ने स्वयं दर्शन करा दिया उनको। उसके बाद यशोदा देवी उनको सबको भेंट देती हैं, सुदासी बताते हैं कि जैसे ही भेंट देती हैं वो सारी भेंट वस्तुएं वो गोपियां तुरंत पहन लेती हैं, नंद बाबा देते हैं वो सारे तुरंत पहन लेते हैं और उसके लेकर नाचने लगते हैं, वंदीजन आते हैं और वो गायन करने लगते हैं, नंद महाराज का गौरव गाने लगते हैं, सब नंद भवन में आनंद होने लगता है। जो जितने ग्वाल बाल आते हैं, गोपी आती है, वो अपने साथ मक्खन भी लेके आती है, तो क्या करती है, सब मक्खन के गोले एक स्वरूप फेंकना आरंभ कर देती है। नंद भवन के आंगन में नंद बाबा को खींच के लेके आते हैं, और नंद भवन को खींच के लेके आते हैं तो नंद बाबा बड़े बड़े बुजुर्ग है, थोड़ा पेट भी बड़ा है उनका, बुजुर्ग शरीर है उनको, तो सब लोग नाच करने लगते हैं, मक्खन को गोले को फेंकते हैं, कुछ दूध फेंकते हैं, कुछ दही फेंकते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा के नंद भवन के आंगन के जो मोरी थी उसमें सारे जाके गोले अटक गए मक्खन के। तो बाद में जो दूध बहा दही बहा तो फिर उसमें क्या हुआ, उसका निचरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो जम गया पूरा। ऐसा कहते हैं कि कमर तक दूध दही का मिश्रण मक्खन के गोले के साथ में तैयार हो गया, और सब ग्वाल बाल नाच रहे हैं उसके अंदर, मानो क्षीर सागर उत्पन्न हो गया नंद भवन के आंगन में। और सब लोग नंद बाबा को बोले नाचो नाचो नाचो, नंद बाबा बोले मैं बुजुर्ग हूँ नाच नहीं सकता हूँ, तो सब ग्वाल बाल कहते आपको नाचना ही पड़ेगा, तो फिर भी नाच नहीं रहे, तो क्या कहते हैं एक पीला वस्त्र लेते हैं और नंद बाबा के बड़े पेट को उससे घेर लेते हैं, एक एंड जो है अपने पास लेते हैं, दूसरा एंड दूसरों को लोगों को देते हैं, और नंद बाबा को फिर ऐसे खींचना आरंभ करते हैं, मानो नंद महाराज बड़े शरीर वाले मंदराचल पर्वत बन गए हैं और मानो क्षीर सागर में उसका मंथन किया जा रहा है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये जो दिव्य समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन जो हुआ, इसमें अमृत तो पहले ही पैदा हो गया था श्री कृष्ण रूपी, और विश्व तो पैदा हुआ ही नहीं, केवल अमृत ही अमृत पैदा हो गया, असब ब्रजवासियों ने इस अमृत का दर्शन का प्राशन किया, ऐसा अद्भुत समुद्र मंथन नंद भवन के आंगन में उस दिन सिद्ध हुआ। फिर नंद बाबा ने क्या किया, फिर नंद बाबा सब ब्राह्मणों को बुलाया, सब लोगों के मुख से पवित्र पवित्र श्लोकों का पठन करवाया, नंद बाबा ने 7 पर्वत बनाए, हमारे होते ना वो अन्नकूट वाले 4-4 फुट वाले, वैसे नहीं, पर्वताकार पर्वत बनाए धान्यों के, उस पर्वताकार रूपी धान्य इकट्ठा करने के बाद में उसका जो शिखर था वो अनंत अलंकारों से भर दिया उन्होंने, और वो रखकर अलंकारों से शिखर उसका आच्छादित करने के पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा उसका पूजन किया, और फिर सागर संगीत मंत्रों के साथ में वो सब धान्य जो है ब्राह्मणों को दान दिया उन्होंने, कई लाख गायों का दान दिया सालंकृत, जिनके सिंगों पर सोने के कैप्स लगाए हुए थे, जिनके पैरों में चांदी के घुंघरू थे, जिनके पुच्छ पे मोर पंख और चांदी के घुंघरू लगाए हुए थे, जिनके गले में सोने की माला और सोने की घंटा लगाई गई थी, जिनके बदन पर क्या कहते हैं उसको सिल्क का वस्त्र, सिल्क को क्या कहते हैं हिंदी में, रेशमी वस्त्र लगाया गया था, जिसकी झालर जो है वो सोने के धागे से बनाई गई थी, इस तरह से चारों तरफ से सालंकृत गायों का लाखों की संख्या में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दिया। सभी जितने ब्राह्मण थे वो धनी हो गए उस समय, और कहते हैं कि उस समय नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि सबके पास धन ही धन था, एक एक भंडार खोल रहे और धन धान दान कर रहे हैं, तो सभी लोग नंद बाबा के दातृत्व से इतने प्रभावित हो गए, किसी ने भी अपने को प्राप्त हुआ धन जो है वो अपने पास नहीं रखा, वो भी दूसरों को दान कर दिया। इस तरह से सभी लोग दानी भाव में आ गए। जब हम दानी व्यक्ति का संग करते हैं तो हम भी दानी बन जाते हैं। हम लोग जब जनरस हार्टेड लोगों का संग करते हैं तो भी हमारे अंदर दातृत्व पैदा होता है, कंजूसी का नाश होता है। ये सब संग का परिणाम है। इतनी प्रचुर मात्रा में नंद महाराज दान कर रहे थे, लुटाते ही जा रहे थे, रुकते ही नहीं रहे थे, तो सभी ब्राह्मणों ने भी अपने पास दिए हुए अलंकार वस्त्र गाय वो भी दूसरों को दान करना आरंभ किया। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर परस्पर दान करने का सुंदर वातावरण ब्रज में निर्माण हुआ। कहते हैं कि नंद बाबा का जो जन्म उत्सव हुआ ना नंदोत्सव, ये 6 महीने तक चलता रहा, 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बहुत लोग नाचे, बहुत घी उड़ाया, बहुत मक्खन के गोले उड़ाए, और दिन कैसे उग रहे हैं और समाप्त कैसे हो रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 6 महीने बीतने के बाद में उनको होश आया तो उन्होंने सूर्यास्त होते हुए देखा। किसने देखा? ब्रजवासियों ने, नंदगांव के वासियों ने, क्योंकि सारा ब्रज इकट्ठा हो गया था नंदगांव में, सब लोग 6 महीने वहीं रुके थे, सब भोजन वोजन सब आनंद नृत्य गान सब भी चल रहा था, 6 महीने के बाद में जब उनका एक्सटेसी थोड़ा सा लौकिक स्तर पे आया, परमानंद का स्थिति लौकिक स्तर पे आया, तो उन्होंने सूर्यास्त होते हुए देखा और तुरंत उन्होंने ब्रह्मा जी को गाली देना शुरू कर दिया। बोले ये दिन जो है ये नंदोत्सव का दिन है, नंद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई है, ब्रह्मा जी को अकल है क्या? आज का दिन तो कम से कम सूर्य उनको देर से अस्त कराना था, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसे सब ब्रजवासी लोग ब्रह्मा जी को गाली दे रहे हैं। और फिर अस्त होता है और नंद भवन का नंदोत्सव समाप्त होता है। इस बीच में क्या हुआ, कृष्ण भगवान का षष्ठी पूजन करना सब आनंद के चक्र में भूल ही गए। अभी आज के तारीख में नंद बाबा का दर्शन करेंगे ना आप मंदिर का, अभी आता है व्हाट्सएप में, तो श्री कृष्ण भगवान जो है ना वो लंगोटी पहन के खड़े हैं और दाऊजी दादा जो है पूरा वस्त्र श्रृंगार करके खड़े हैं। तो 6 दिन तक जब तक षष्ठी पूजन नहीं होता है तब तक अभी कृष्ण भगवान वहां पर लंगोटी में रहेंगे। जब षष्ठी पूजन किया जाएगा 6वें दिन उनके जन्म के बाद में, तब जाकर उनको पूरा श्रृंगार किया जाएगा। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उस दिन उस समय उनका 6 दिन के बाद में षष्ठी पूजन हुआ ही नहीं। और जब फर्स्ट बर्थडे उनका आया तो फर्स्ट बर्थडे मनाने के पहले यशोदा को याद आई कि षष्ठी पूजन तो हुआ नहीं, तो उसके बिना पहला जन्मदिन कैसे मना सकते हम लोग। तो जल्दी जल्दी में नंद बाबा यशोदा मैया ने छठीकरा में उनका षष्ठी पूजन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा छठीकरा। यानी कि फर्स्ट बर्थडे के अष्टमी के पहले षष्ठी को उनका षष्ठी पूजन किया गया और फिर अष्टमी को तुरंत ही पहला जन्मदिन मनाया। इस प्रकार से भगवान का दिव्य नंदोत्सव मनाया गया नंद भवन में नंद बाबा के सानिध्य में, और वहां पर वसुदेव ने मन से ही 2 लाख गाय अर्पण करके अपना बच्चे का जन्मदिन मनाया। आप सोच सकते हैं कितना आनंद है ब्रज में। भगवान का आविर्भाव जो होता है ना वो सब जीव के कल्याण के लिए होता है। जैसे हमने कल बताया कि भगवान केवल प्रेम को सबको देने के लिए आविर्भाव लेते हैं। फिर वहां पर पुतना निकली और पुतना सारे बालकों को, हजारों बालकों को मारते 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 वहां पर आ गई और अपने हाथ में कमल लेके आ रही थी वो सुंदर रूप धारण करते हुए। जैसे कमल लेकर आ रही है तो यशोदा माई को लगा कि साक्षात लक्ष्मी देवी हमारे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। सुंदर सिंह ने आते ही कहा कि क्या मैं उसको गोद में ले सकती हूँ, तुरंत उसने गोद में दे दिया। देखो विश्वास कैसे होता है ना। लेकिन पुतना को ना एक ढोंगी गुरु का वर्णन दिया गया है, तो सही गुरु नहीं है लेकिन गुरु जी का वेश धारण करता है, ढोंग धारण करता है और सभी जनता को बहकाता है। तो उसने अपने स्तन को बालक को लगाया, पीछे आंगन में गई वो और कालकूट भरे हुए विष से भरे हुए स्तन को बालक को लगाया। बालक ने आंखें बंद कर ली। आचार्य बताते आंखें बंद क्यों कर ली, क्योंकि सबसे पहले राक्षस का वध करना है तो भी स्त्री का करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद कर ली। और आंख बंद करने का और कारण था कि वो आश्वस्त हो जाए कि भाई मैं इसको आराम से मार सकती हूँ, बालक को कोई भय नहीं हो रहा है, वो शांति से आंख बंद करके दूध पीने जा रहा है तो वध करने में कोई संकोच नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा। तो बालक के दिव्य ओष्ठ का स्पर्श वो चुचुकाग्र को हुआ, पुतना के स्तनाग्र को हुआ। स्तनाग्र को हुआ तो भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। निश्चिंत हो गई पुतना कि अभी वो मरने वाला है। दूध सारा पी लिया, विष भी पी लिया, फिर प्राण भी पीने लगे, तब जाकर चिल्लाने लगी वो, क्योंकि तो उसको पता नहीं था कि ये बालक दिव्य बालक है। उसको देखकर क्षण भर उसको चतुर्भुज भगवान का दर्शन भी हुआ था, जैसे बालक का दर्शन लिया गोद में, लेकिन तुरंत उसको क्या कहते हैं उसको माया युक्त आश्वस्त करने के लिए तुरंत दो दो भुजा वाले रूप में आ गए भगवान। और भगवान ने दूध और विष के साथ में उसके प्राण भी खींच लिए। वो बड़ा बड़ा जोर जोर से आक्रोश करने लगी, चिल्लाने लगी, स्तन पर भगवान लटके हुए हैं और वो अपना जो नया बना हुआ सुंदर रूप है उसको भी बनाए रखना उसके लिए नामुमकिन हो गया। तो वो चेंज हो गया, 12 मील लंबा शरीर बनकर वो दौड़ने लगी पूरे ब्रज में, यहां वहां दौड़ने लगी। और भगवान ने उसको ऐसा प्रेरणा दिया कि वो नंदगांव ब्रज के बाहर चली गई, मतलब नंदगांव के बाहर चली, गोकुल के बाहर चली गई और खेतों में जाकर गिर गई। और खेतों में जाकर गिरने के बाद भगवान ने उसके प्राण भी छीन लिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इतनी बड़ी ध्वनि हो गई जोरदार, यशोदा मैया ने अभी अभी बालक को दिया था उसके हाथ में, तो भाग कर देख के आए तो क्या हुआ, भगवान बालक तो आंगन में है ही नहीं। और जहां से आवाज आई वहां देखा तो वो जो सुंदर स्त्री आई थी वो 12 मील के भयंकर राक्षसी बन गई है। उसके जंघा जो है वो ऐसे बड़े पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, उसके स्तन जो है वो बड़े बड़े पहाड़ की तरह दिख रहे हैं। उस स्तन के अग्र के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर, एक हमारा कृष्ण जो है डोल रहा है। उसके बालों का वर्णन किया गया है, वो उसके जो पेट था वो एक हाईवे की तरह था, और 12 मील के खेतों में जाकर गिर गई वो नुकसान करते हुए। और इस बीच क्या हुआ था, नंद बाबा टैक्स देने के लिए मथुरा गए थे, वहां वसुदेव को मिले, उनको उन्होंने सतर्क किया कि आगे संकट आने वाला है, जल्दी भागो। और जब वो लौट के आए तब देखा उन्होंने कि ये पुतना आकर ऑलरेडी ये सब लीला हो चुकी है, और वो 12 मील का शरीर धारण करके वहां गिरी हुई है, उसके स्तन पर बालक विराजमान है, सब लोग चिंतित है, तो अभी क्या करना है, बालक को छुड़ाना है उसके शरीर के चंगुल से। तो वो उसकी जटाई थी ना, लाल लाल रंग की जटाई जो ऐसी फैली हुई थी जमीन पर, अब जमीन पर आ गए ना वो, उन्होंने गांठे लगाए उसके अंदर, बहुत सारी गांठे लगाई। हम लोग कैसे करते हैं दोरखंड को, गांठ लगाकर पैर रख के चढ़ते हैं ना उसके ऊपर, वैसे गांठे बनवाई उन्होंने, एक गांठ बनवाई उस पर पांव रखा, फिर आगे गए, आगे गांठ बनवाई, ऐसे करके गांठे बनवा के हजारों ग्वाल बाल उसके सर पे चढ़ गए। कहते हैं उसके मुंह पे हजारों ग्वाल बाल चल रहे थे, और उसके बालों के माध्यम से उन्होंने मुंह पे प्रवेश किया, मुंह पे चल के हुए, फिर गर्दन के ऊपर उतरे, फिर वापस चढ़े, फिर वो पर्वत था वो स्तन रूपी उस पर प्रवेश किया, फिर उस पर चढ़े, फिर बालक को उन्होंने एक एक करके नीचे उतार के यशोदा के गोद में दिया। सोच सकते हैं आप, बिग एक्सरसाइज टू रिलीव कृष्णा फ्रॉम द टू माउंटेन्स। फिर उसके बाद ये प्रश्न हुआ कि अभी इसका क्या किया जाए। इस कथा के बाद में मैं आपका कथा को विराम दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स है, इसलिए मुझे बताने में बहुत मोह हो रहा है। अभी ये 12 मील की राक्षसी पड़ी हुई है और हमारे घर में पड़ी हुई है, तो उसका संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। देखो कल्चर, ब्रजवासी ये नहीं बोल रहे हैं सड़ने दो साले को, क्या करना है, इतना पाप करने को आई थी, बालक को मारने आई थी विष देकर, मरने दो उसको। नहीं, अगर हमारे घर में उसका मृत्यु हुआ है तो संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों की सहायता से उसके 12 मील लंबे शरीर को 108 विभाग में विभाजित किया, 108 भाग किए उसके, और 108 चिताएं रची, 108 ग्वाल बालों को मुखाग्नि देने के लिए तैयार किया उन्होंने, मतलब अग्नि देने के लिए। और 108 ग्वाल बालों ने 108 चिताएं रख के उसके 108 टुकड़े करने के बाद में जो शरीर के अवयव बचे उसको अग्नि देकर, क्या कहते हैं उसको, विथ फुल रिचुअल्स, सागर संगीत, उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। आचार्य लिखते हैं देखो पुतना का नाम का मतलब क्या है, पुतना जिसको पुत्र नहीं है उसका संस्कार कौन करेगा, लेकिन भगवान का स्पर्श इतना दिव्य है कि जिसको भगवान के ओष्ठाग्र का स्पर्श हुआ शनाग्र को, उतने स्पर्श मात्र से उसका सारा पाप जो है भगवान ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा चूस लिया उसको। उस स्पर्श के माध्यम से भगवान ने पुतना को पूरा शुद्ध भक्त बना दिया। जितना समय भगवान उसके स्तन पे लटके हुए थे, उतना समय जितनी वेदना, भयंकर वेदना का पुतना ने अनुभव किया, वो सारी वेदना को अनुभव करते करते सारे पाप उसके नष्ट हो गए, शुद्ध भक्त बन गई हो वो। इतनी वेदना का अनुभव सहन करते 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 वो पवित्र हो गई, उसका हृदय पवित्र हो गया, उसके हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो गया, क्योंकि स्तनपान करने के लिए भगवान आए थे ना, और वो स्तनपान कराने के लिए आई थी, भले विष दिलाने के लिए आई थी, लेकिन स्तनपान कराने के लिए आई थी ना, तो भगवान ने उसको माता का स्थान दे दिया। भगवान क्या करते हैं, दुर्गुणों के सागर के अंदर एक सद्गुण दिखेगा तो दुर्गुण को दुर्लक्ष करते हैं, उस सद्गुण को स्वीकार करते हैं, उसी का फल भक्त को देते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं। तो पुतना इतना गलत विचारों का सागर, दुष्ट दुष्ट विचारों का सागर लेकर आई थी वो, लेकिन एक उसमें भाव था कि मुझे वो दूध पिलाने के लिए माता के समान आई थी, मेरे माता के समान मुझे दुग्धपान कराने का उसने प्रयास किया, मैं उसका कुछ समय के लिए पुत्र बना। इस भाव को भगवान में स्वीकार करते हुए, बाकी सारे दुर्गुणों को दुर्लक्ष करते हुए, उसको शुद्ध भक्त बनने के बाद में गौलोक धाम में यशोदा देवी के धात्री का स्थान दिया उसको, इतना पवित्र उसका उद्धार किया भगवान। और फिर उसका पुत्र कोई नहीं है, तो जिसका स्पर्श भगवान के अंग को हुआ है, श्री अंग को हुआ है, जिसके भगवान के श्री अंग के स्पर्श जो पुनीत हो गई है, उसके लिए पुतना होने पर भी क्या फर्क पड़ता है। भगवान उसको 108 पुत्र दिए और 108 पुत्र के बारह उसका शरीर का दाह संस्कार किया गया। और कहते हैं उसके शरीर के जब 108 चिताएं जल रही थी, उसमें चंदन अगुर का सुगंध सब ब्रज में फैल रहा था। देखो इतनी पापी व्यक्ति भी मांस का स्पर्श आना चाहिए ना, बदबू आनी चाहिए ना सब जगह पर, वो भी पापी व्यक्ति का शरीर जल रहा है। लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति भी भगवान के संपर्क में आने से पवित्र हो जाता है, उसके शरीर से पूरे ब्रज में छह फैल सके उतना सुगंध फैल गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और गौरव करने लगे, देखो भगवान के संपर्क का कितना महात्म्य है। कथा को विराम देने के पहले इसमें विचार करना जरूरी है कि हम सब पतित से पतित जीव हैं, जन्म जन्मांतर तक अनंत पाप करते हुए यहां पर आए। भगवान का स्पर्श तो हमको होगा नहीं, उतने हम भाग्यवान तो है नहीं कलयुग के जीव। प्रायेण कल अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रतः, इतना भाग्य तो हमारा है नहीं, इतने पतित जीव है हम सब। लेकिन फिर भी भगवान अपने श्री अंग का संग देने के लिए अपने आप को पूरे ऐश्वर्य पूरे व्यक्तित्व पूरे अपने अस्तित्व को अर्पण करते हुए अपना नाम हमको देते हैं। और जैसे ही उस नाम को हम ग्रहण करते हैं, जैसे पुतना भगवान को स्तनपान कराने जा रही है, वैसे हमारा भगवान के नाम के साथ संपर्क होता है हृदय से उच्चारण करते हुए, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर पुतना जैसे होने पर भी हमारे शरीर से भक्ति की दिव्य गंध जो है सब जगह फैलने लगती है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में ऐसे कितने भक्त थे, वो ड्रग एडिक्ट थे, व्यभिचारी थे, मांसाहारी थे, जुआरी थे, झूठ बोलने वाले थे, खून करने वाले थे, लुटेरे थे, डाकू थे, क्रिमिनल्स थे। जब भगवत रूपी भगवान का साक्षात रूप उनका नाम जब उनको दिया गया तो वो फर्स्ट क्लास वैष्णव बन गए, सारे पापों को छोड़कर पवित्र बन गए। वो वास्तविक जन्माष्टमी यही है, जिस दिन हम भगवान के नाम का प्रातः काल में स्मरण करते हैं वही दिन जन्माष्टमी है। उसी दिन उसी समय जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं हमारे हृदय के आंगन में भगवान का उदय होता है, भगवान का जन्म होता है, भगवान का आविर्भाव होता है। इसलिए भक्त के जीवन में हर रोज जन्माष्टमी है, फिर भी हम ये जन्माष्टमी मनाते हैं एक और लाभ भगवान के और पास जाने के लिए, भगवान के सानिध्य में और ज्यादा रूप से उत्कटता से रहने के लिए हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो आइए इस भगवान के नाम के हमारे जीवन में प्रवेश करने के प्रति कृतज्ञता को लेते हुए आज का उत्सव मनाए हम, ताकि ये जो भगवान का स्पर्श अंग संग हमको प्राप्त हो रहा है उसका पुतना की तरह हमारे ऊपर परिणाम हो जाए और हम भी भगवान के पवित्र भक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना को लेकर आज का हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। और भगवान जैसे पुतना भगवान को मारने को आतुर थी, उससे भी अधिक भगवान उसका उद्धार करने के लिए आतुर थे, है ना, नहीं तो केवल दूध पीते और बाद में पुतना को किसी और तरीके से मारते। लेकिन जिस माध्यम से वो आई थी उसी माध्यम से ही भगवान ने उसका उद्धार किया। उसी तरह से हम लोग भगवान के लिए शायद कभी धन कमाने के लिए भगवान के पास आ सकते हैं, कभी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं, कभी कोई सुंदर पत्नी के लिए आ सकते हैं, कोई और भौतिक इच्छा के लिए आ सकते हैं, चतुर्विधा भजन तो माम। लेकिन भगवान उन सबको चीजों को देते हुए भी हमारा उद्धार कर सकते हैं अगर हम उनके नाम का संग करेंगे। नाम के माध्यम से भगवान हमको प्रत्यक्ष व्यक्ति रूप संग देंगे, अंग संग देंगे। तो आइए भगवान के नाम को जीवन में स्वीकार करते हुए भगवान को ये हम अवसर दे सकते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, जो हमसे भी ज्यादा हमारा उद्धार करने के लिए व्याकुल है। ही इज मोर ईगर टू डिलीवर अस देन वी आर ईगर टू गेट आवर सेल्फ डिलीवर्ड। ये एक चिरंतन तत्व है भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।